السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمد للہ رب العالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے دی گیٹس آف پیراڈائز، جنت کے گیٹ، جنت کے دروازے. تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے میرا ایک سوال اچھا ہے. خلوص دل سے سجدہ ہو تو اس سجدے کے کیا کہنے، خلوص دل سے سجدہ ہو تو اس سجدے کے کیا کہنے، جہاں ہم نے جبی رکھ دی وہیں کعبہ سرک آیا. جو باغ بھی ہے جوہد مسلسل سے کھلا ہے، تخلیق کسی شے کی زبانی نہیں ہوتی، تخلیق کسی شے کی زبانی نہیں ہوتی. ایک لمحہ جو ہم سے روٹھا تھا، ایک لمحہ جو ہم سے روٹھا تھا، عمر گزری اسے منانے میں. جنت کا سفر، کیونکہ جنت کے گیٹ، جنت کے دروازوں کی بات ہو رہی ہے، تو آغاز میں ہی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جنت ہے کیا، جنت کسے کہتے ہیں. تو جنت کا سفر جو ہے، یہ کون سا سفر ہے؟ تو میری پیاری بہنوں، جنت کا سفر جذبوں کا سفر ہے، یہ ایمان کا سفر ہے، یہ تبدیلی کا سفر ہے، یہ عمل کا سفر ہے، یہ محبتوں کا سفر ہے. جنت کا سفر معاف کر دینے کا سفر ہے. جنت کا سفر دوسروں کے رازوں کی حفاظت کرنے کا نام ہے. جنت کا سفر بزرگوں کو، بوڑھوں کو اپنے حصے کی پلیٹ دے دینے کا نام ہے، ان کے گلاس میں پانی ڈال دینے کا نام ہے، اپنی کرسی ان کے لیے خالی کر دینے کا نام ہے. جنت کا سفر رب کی بندگی کا سفر ہے، رب کے آگے جھکنے کا سفر ہے. کیسا جھکنا؟ کہ سر نیاز جھکایا تو پھر اٹھا نہ سکے. میری نظر میں وہی سر ہے، سر عامر، جسے زمانہ کاٹ تو ڈالے مگر جھکا نہ سکے. تو جنت کا سفر عبادت کا سفر ہے، عبادت. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. ہائے وہ لوگ تھے کیسے وہ لوگ تھے، ہائے وہ لوگ تھے کیسے وہ لوگ تھے، چھوڑ دی زندگی بندگی کے لیے، ایک تو بھی تو ہے ایک میں بھی تو ہوں، ہائے افسوس ہوں، چھوڑ دی بندگی زندگی کے لیے. تو جنت کا سفر اپنی پوری زندگی اللہ کے نام کر دینے کا سفر ہے، اور جنت کا سفر یقین کا سفر ہے، یقین کہ جس رب پر ایمان لائے اس کے ہر فیصلے پر یقین، اس کے فیصلوں پر اعتماد کا سفر ہے. پھر کبھی شک نہ کریں، پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، پھر کبھی پچھتائیں نہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. تو میری پیاری بہنوں، بہت اہم عنوان ہے دی گیٹس آف پیراڈائز. تو جنت کے دروازے تک کیسے پہنچ جاؤں؟ پہنچ تو جاؤں، حرم کے دروازے تک پہنچ تو جاؤں گی، لیکن کیا اندر مجھے جانے دیں گے؟ ظہر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے جب حرم میں، تو فجر کے بعد سے لوگ وہاں پہ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. صبح 7-8 بجے سے کہتے ہیں اس کے دروازے پر پہنچتے ہیں، تو پھر ورنہ وہ تو 9 بجے دروازہ ہی بند کر دیتے ہیں. تو جنت کے دروازے پہ، تو جنت جس کی خوشبو حدیث میں آتا ہے 40 سال سے، ایک حدیث میں آتا ہے 70 سال کی مسافت سے، 40 سال کی مسافت، 70 سال کی مسافت، ایک حدیث میں آتا ہے 100 سال کی مسافت، اتنی دور سے آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن کئی بہت سے لوگ ہیں جو اس کی خوشبو سے بھی محروم کر دیے جاتے ہیں. خوشبو، داخلہ تو دور کی بات ہے، گیٹ کے اندر جانا تو دور کی بات ہے، لیکن اس کی خوشبو تک سے محروم کر دیے جاتے ہیں. बेअमल, बदअमल, झूठ बोलने वाले और न जाने फिर क्या क्या करने वाले हैं ना। तो बात जन्नत की है, मेरी जन्नत, आपकी जन्नत, जो मेरे और आपके घर के अंदर है। सुबह भी दरवाजे खुलते हैं, शाम को भी खुलते हैं जन्नत के दरवाजे, और घर में जहन्नुम के दरवाजे रोज खुलते हैं, सुबह भी खुलते हैं, शाम को भी खुलते हैं। तो जन्नत के गेट, जन्नत के दरवाजे, जन्नत का दाखला, जन्नत की खुशबू, जन्नत के महल्लात, उसकी वुसतें, उसके और उसकी मट्टी और उसके महल्लात और उसके चश्मे, तो जन्नत। तो मेरी प्यारी बहनों, बहुत अहम टॉपिक है, बहुत मुश्किल टॉपिक है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इश्क बढ़ता रहा सुएदारो रसन, इश्क बढ़ता रहा सुएदारो रसन, जख्म खाता हुआ मुस्कुराता हुआ, रास्ता रोकते रोकते थक गए जिंदगी के बदलते हुए जाविये। तो जिन लोगों ने कलमा पढ़ा, अमन तो बिल्ला कहा, अमन तो बिल्ला ही सुमस्तकिम, फिर वो उस पर जम गए कि अल्लाह मेरा रब है। फिर वो लोग जो जन्नत में जाने के मुतलाशी हैं, वो तो सुबह शाम ये कहते हैं, रदी तो बिल्लाह रब्बा वबिल इस्लाम दीना वबे मुहम्मदिन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तो हर सुबह शाम अपने दिल की गहराइयों से ये नारा मस्ताना पुकारते हैं कि मैं इस बात पे राजी हूं कि अल्लाह मेरा रब है, मैं तो राजी हो गई, अल्लाह मैं खुश हूं, मैं तो राजी हूं कि तू है मेरा रब। फिर सौ खुदावंद को वो सजदा नहीं करते, फिर इधर देखना, फिर उधर देखना, फिर दिल ये चाहता है, जमाना ये कहता है, मेरे दोस्त ये चाहते हैं, नहीं बंदाए खुदा बन या बंदाए जमाना। तो क्या है, रदी तो बिल्लाह रब्बा, अल्लाह मेरा रब है। तो जब अल्लाह को रब माना, तो इसका मतलब क्या है कि पूरे कुरान के अंदर जो ऑर्डर्स हैं, जो कुछ मेरा और आपका रब कह रहा है, उसको अपनी जिंदगी पर नाफिज करना है। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन जो है वो इस्लाम है, सरेंडर होने का नाम है। इस्लाम के दो मानी हैं, एक पीस, अमन, सुकून, और दूसरे माने मुकम्मल अतात और फरमाबरदारी। तो मुकम्मल अतात और फरमाबरदारी जब करेंगे, असलमा असलिम, अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि असलिम, तो उन्होंने कहा कि असलमतु लिरब्बिल आलमीन, जरा सा भी गौर नहीं किया, जरा सा ये नहीं कहा जरा दोस्त से मशवरा कर लूं, स्काफ ओढ़ सकते हैं हम के नहीं ओढ़ सकते, मैं सही से नमाज पढ़ सकूंगी कि नहीं, मैं दीन पर अमल कर सकूंगी कि नहीं, सूद के बगैर जिंदगी गुजार सकूंगी कि नहीं, है ना। दीन पर अमल करते हुए, फराइज पर चलने के लिए, हराम से बचने के लिए हम कहते हैं जरा ठहरे सोचने तो दे, पता नहीं हो सकेगा कि नहीं। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा असलमतु लिरब्बिल आलमीन, कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए झुक गया। फिर कुरान में आता है कि इसी चीज की वसीयत उन्होंने अपने औलाद को की, आपने इसहाक अलैहिस्सलाम को की, आपने उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को भी की, और याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को वसीयत की, यही वसीयत की, और याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि वही वसीयत जो कि मेरे बाप दादा ने की थी, यानी नस्लों में आगे चीज ट्रांसफर हो रही थी। और फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने बच्चों से मरते वक्त पूछा कि मा ताबुदूना मिन बादी, कि मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, ये नहीं फिक्र की कि मा ताकुलूना मिन बादी, कि मेरे बाद क्या खाओगे, उनको इस बात की फिक्र नहीं थी कि मेरे बाद बच्चे क्या खाएंगे, घर अपना होगा कि नहीं, सूद पर अपने नाम अभी से बुक करा लेते हैं ताकि बच्चों का अपना घर तो हो। बीबी आसिया का, बीबी आसिया का फिरौन के महल में दिल नहीं लगा था, रब इब्नली इंदा का बैतन फिल जन्ना, ए मेरे रब जन्नत में अपने पास मेरे लिए महल बना ले। फिरौन के महलात सोने चांदी जड़े हुए, हीरों की काने थी उसके पास, क्या कुछ अल्लाह ने उसको नहीं नवाजा था, लेकिन बीबी आसिया का उस महल में दिल नहीं लगा था, अल्लाह से दुआ मांग रही थी, रब इब्ने लिए इंदा का बैतन फिल जन्ना, कि जन्नत में अपने पास मेरे लिए महल तामीर कर दे मेरे रब। तो आज बीबी आसिया जैसी दीवानगी, बीबी आसिया वाला इश्क, बीबी खदीजा का इश्क जो कि जन्नत की औरतों की सरदार थी, और हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा वाली ख्वाहिश आज लिए मैं और आप भी बैठे हैं। बाज़ औक़ात शक्ल वैसी ना हो तो बंदा रो के वैसी बना लेता है, अमल वैसे ना भी हो तो चलो ख्वाहिश करना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है हम सबको जन्नत का जिक्र, जन्नत की बात, जन्नत की तलब, जन्नत की जस्तजू और जन्नत का ये सफ़र। तो मेरी प्यारी बहनों, जन्नत का सफ़र जो है बहुत सालों से मेरा और आपका शुरू हो चुका है, यानी मेरे और आपके कदम सुए जन्नत कितने बड़े और सुए जहन्नुम कितने बड़े, क्योंकि ला इला इला कहने के बाद अमल कैसे किए और बदअमलियाँ कितनी की, अल्लाह को कितना राज़ी किया और शैतान को कितना मैंने और आपने खुश किया। और लेकिन अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले तो कैसे थे, फिक्र ये थी कि शबे हिजर कटेगी क्यों कर, लुत्फ ये है कि हमें याद ना आया कोई, यानी जो अल्लाह के रास्ते पर चले तो कुछ याद ना रहा, चलते रहे चलते रहे। तो होना क्या चाहिए, यूं तो यूं कि जिंदगी को रश्क आए, यूं तो यूं कि जिंदगी को रश्क आए, मरूं तो मौत कहे कौन मर गया यारो। तो आज सोचना है मैंने और आपने कि मेरे और आपके जनाजे की सफ़ें कितनी होंगे, मेरे और आपके जनाजे में कितने लोग शिरकत करेंगे, कितना बड़ा मेरा और आपका जनाजा होगा, मेरे और आपके मरने के बाद मग़फ़रत की दुआएं करने के लिए कितने हाथ उठेंगे। आज ये सोचना है कि मेरे और आपके लिए मग़फ़रत की दुआएं करने वाले कितने हाथ उठेंगे, कितना मैंने सदका जारिया जमा किया है, मेरी औलाद क्या मेरे लिए सदका जारिया बनेगी, क्या मैंने उसके लिए कोशिशें की हैं। मेरा और आपका काम कोशिशें करना है, फल देखना नहीं है, फल काटना नहीं है। मेरा और आपका मसला यह है फल के ऊपर नज़र ज़्यादा रखते हैं कि बच्चे नेक नहीं बन रहे, नेक बनना बनाना ये अल्लाह के काम है। हदायत अल्लाह उस वक्त नहीं देता जब तक कि वो बंदा खुद ना चाहे, पैगंबर भी उसकी इस्लाह नहीं कर सकते जो अपनी इस्लाह खुद ना चाहे। जहां तक दुनिया की बात है तो अल्लाह बिन मांगे फिरौन को भी देता है, सबको देता है, जिसको जो मांगे या ना मांगे। जहां तक आखिरत की बात है, जहां तक रब की रजा की बात है, जहां तक जन्नत की बात है, जहां तक हदायत की बात है, वो अल्लाह बिन मांगे जो है वो नहीं देता। तो जन्नत जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पसंदीदा बंदों के लिए अल्लाह ने तैयार की है, इद्दत लिल मुत्तकीन। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे कि जन्नत मैंने इंसानों के लिए बना दी है, वहां पे इंसान का लफ्ज़ नहीं है, इद्दत लिल मुत्तकीन। जन्नत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुत्तकीन के लिए जो है वो तैयार किया है। और फिर इसके बाद आप देखेंगे कुरान मजीद में एक जगह पे नहीं, हमें बार बार जन्नत का जिक्र मिलता है, जैसे सूरत नाजियात में हम देखते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत का मेरे और आपके सामने क्या तारुफ रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं सूरत नबा में फरमाया कि इन्ना लिलमुत्तकीना मफाजा, और इसी तरह इन्ना जहन्नमा कानत मिरसादा, और सूरत नाजियात में जो था उसकी आयतें क्या हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नुम को तैयार किया है, व बुर्रिज़तिल जहीमु लिमन यरा, और साथ ही कहा फअम्मा मन तगा व आसरल हयातद दुनिया। तो जहन्नुम जो है वो अल्लाह के नाफरमानों के लिए है ना। तो जन्नत मिलेगी उनको जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो मुत्तकी हैं, जो अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं। और इसके बारे में आप देख सूरत स्वाद में इसकी चंद आयात, जैसे आयत नंबर 45 से लेकर 59, तो इसमें अल्लाह ताला क्या कहते हैं, वज़कुर इबादना इब्राहीम व इसहाका व याकूब के, और जिक्र करें हमारे बंदों का इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम, औलिल ऐदी वो सारे जो थे हाथों वाले थे, वल अबसार और आंखों वाले, यानी अपने हाथों से भी वो एहसान के दर्जे की नेकियां करने वाले थे, और इसके साथ साथ अहले नज़र थे। बराहिमी नज़र पैदा बड़ी मुश्किल से होती है, हवस छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें। तो दिल, दिमाग, हाथ, वो सब कुछ इस्तेमाल करने वाले थे हमारे बंदे। तो यहाँ पे रोल मॉडल मेरे और आपके सामने रखे जा रहे हैं। और ये कौन थे, इन्ना अखलसना हुम बिखालिसतिन ज़िक्रद्दार, और हमने इनको छांट लिया था, खालिस कर लिया था आखरत के घर की याद के लिए। इनका जो था वो क्या था कि हर वक्त जो है ना ये अल्लाह के घर की इनको याद रहती थी। अच्छा, मेरा और आपका हाल क्या है कि हम अल्लाह को कितना याद करते हैं। हम मस्जिद के अंदर भी होते हैं ना तो दिल बाजार में कहीं चहलकदमी कर रहा होता है, मस्जिद के अंदर होते हैं ना तो दिल जो है मॉल में किसी चीज़ के अंदर होता है, या घर की पता नहीं चूल्हा बंद किया था कि नहीं, पता नहीं लाइट ठीक की थी नहीं, गाड़ी को सही से लॉक किया था कि नहीं। नमाज में होते हैं तो भूली हुई बिसरी चीजें जो है हमें सब याद आने लगती हैं। तो लेकिन इनके दिल जो थे ना, इन्होंने अल्लाह के लिए अपने दिलों को खालिस कर लिया था। दिल ना एक बर्तन की तरह है, बर्तन में अगर पानी भरा हुआ हो तो आप दूध और शहद नहीं डाल सकते, पानी निकालेंगे तो दूध उसमें आएगा, शहद आएगा। और अगर बर्तन जो है दिल का बर्तन दुनिया की मोहब्बत से भरा हुआ है हमने, और हम चाहते हैं अब इसमें कुरान आ जाए, इसमें आखरत आ जाए, तो वो नहीं आ सकती। टीवी ड्रामे, गीबत, चुगली, हुमज, लम्स, हर वक्त की प्लानिंग, बातें करने के बाद फिर कहते हैं जहन में ना कुरान रहता नहीं है, दुआएं याद नहीं होती, नमाज में दिल लगता नहीं है, समझ नहीं आती। तो हज़रत इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और बड़े बड़े सलफ़ सालहीन की ज़िंदगी का अगर मुताला करें, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि मैंने अपने उस्ताद से पूछा कि हाफ़िज़े का इलाज बताएं, तो इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इल्म जो है ये अल्लाह का नूर है, और अल्लाह का नूर जो है उन दिलों में नहीं दिया जाता जिन दिलों में जो है वो अल्लाह की नाफरमानी होती है। तो जो लोग अपनी ज़िंदगी को गुनाहों से भरते हैं तो अल्लाह का इल्म उनसे छीन लिया जाता है। तो अगर हम कुरान को हिफ्ज करना चाहते हैं, दुआएं याद करना चाहते हैं, अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं, तो लायानी, फजूल और बेमकसद गैर ज़रूरी मशागिल और चीज़ों से मुझे और आपको बचना है, क्योंकि अल्लाह का इल्म, आखिरत की याद, जन्नत का सफ़र, गैर ज़रूरी चीज़ों से बचकर जो है ना फिर हम सीधे रास्ते पर सराते मुस्तकीम पर चल सकते हैं। तो ये कौन लोग थे कि इन्होंने अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से अपने आप को आबाद किया हुआ था। तो मुझे और आपको देखना है कि दिल किसको याद करता है, मैं और आप जब बातें करते हैं किसकी ज़्यादा बातें करते हैं, आंसू निकलते हैं तो किसके लिए निकलते हैं, हाथ उठते हैं तो किस काम के लिए ज़्यादा उठते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना जायज़ा लेना है, क्योंकि मैं अपना जब जायज़ा लेती हूँ तो मैं इस तरह जायज़ा ले सकती हूँ कि मैं जिन दोस्तों के अंदर से अभी उठी तो उनके साथ मिलने के बाद मैंने ये सोचा कि अच्छा मुझे जो है पूरा कुरान क्यों ना मैं हिफ्ज कर लूं, अरे मुझे तो कुरान का तर्जमा तफसीर से उसको पढ़ना चाहिए था। तो नेकी का मेरे अंदर शौक पैदा होता है, या मेरा दिल चाहता है कि अच्छा मैं भी जरा, पहले तो मोटी गोल्ड की चूड़ियां, अब जरा मैं बारीक बना लूं, मेरी तो कल से दिल में ऐसी ख्वाहिश हो रही है बारीक चूड़ी सोने की, कितनी अच्छी लगती है ना। हाँ थी तो सही, 6 अम्मी ने दी थी, मोटी मोटी थी, चौड़ी चौड़ी सी, और 6 जो थी सास ने भी दी थी, डिजाइन बड़ा पुराना था, पता नहीं अपनी डाल दी थी उसने। अब दिल चाहता है बारीक ना बना लूं, 6 चलो 6 नहीं 2 तो हो ना, फिर हर वक्त पहन कर घूमूं। तो अब जो है वो 2-4 दोस्तों के अंदर से उठकर कल जब बैठी थी, जब घर वापस आई तो अब दिल चाह रहा है 2 चूड़ियां तो हो, 6 हो पहले तो अच्छी बात है बारीक, लेकिन 3,500 की आती है, सिर्फ $3,500 की, पता किया है मैंने ना, $3,500 की आती है, 6 नहीं 2 तो फिर मिल जाए ना। अब सो रही हूँ, सोच रही हूँ पता नहीं अम्मी अबू ने कहाँ ब्याह दिया, कितना नखट्टू शौहर है, और फिर और तनख्वाह भी कुछ नहीं है, ऊपर से बीमार घर के अंदर, या ये कि पीछे ही भेजता रहता है हर वक्त पीछे, मेरी तो जान खा ली है, ससुराल वाले कब जान छोड़ेंगे, बस उसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं है इसको। और फिर ये बच्चे, बच्चों की मुसीबतें पूरी नहीं होती, एक की फीस, दूसरे की फीस, फलां का मसला, अच्छा वो साथ वाली बहन ने गाड़ी खरीद ली है नहीं, अब कल से दिल ऐसा उदास है, 1 हफ्ता हुआ है नई गाड़ी खरीदे हुए, बिल्कुल नई गाड़ी, और ऐसी गाड़ी के उसकी कितनी अंदर उसके फंक्शन हैं, जो रास्ते में बैठ कर आई हूँ तो सारी गाड़ी में उसके फंक्शन आप सुनते रहे, मैं भी सुनती रही, सोचती हूँ इतनी ख्वाहिश थी जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तब से ख्वाहिश थी कि कब ये रिक्शे से जान छूटेगी, अपनी गाड़ी हो ना। अबू ने सऊदीया से मंगवाई भी न्यू गाड़ी, 0 मीटर लंबी गाड़ी, तो अबू ने बेच दी, अच्छा मैं अपनी गाड़ी पे जब सफर करूंगी ना फिर दूसरों को भी राइड, आज तक अपनी गाड़ी नहीं है, शौहर की गाड़ी, बेटे की गाड़ी, लेकिन अपनी गाड़ी ही नहीं, पता नहीं मुझे कब गाड़ी अपनी मिलेगी, कैसे मिल सकती है अपनी गाड़ी, है ना। तो दूसरे की गाड़ी देखी तो अपने दिल के अंदर गाड़ी की, अच्छा उनके घर गए थे, अब सोफा आ गया है, वो लेदर का था, कपड़े का था, अब तो और अच्छा आ गया है, वो फटता नहीं है, वो कटता नहीं है, ब्लेड नहीं लगता, रंग का ख़राब नहीं होता, तो पता नहीं अब मेरे सोफे तो सेकंड हैंड ही खरीद लिए थे, पता नहीं 10 साल से मुसीबत, और शोहर तो घर से कोई चीज़ निकालने भी नहीं देते, या फिर सास नहीं निकालने देते, तो कभी सास पे गुस्सा आता है, कभी शोहर पे गुस्सा आता है, कभी वो वाइट गोल्ड याद आता है, कभी ये कि वो ब्रीजा का सूट तो है लेकिन अब नगों वाला आ गया है, वो पुरानी चीज़ें गई हैं, मोतियों वाली आ गई हैं, पहले वो ऊँची लंबी कमीज़ें थी अब ऊँची आ गई हैं, अब तो वो जो है वो टखनों से ऊपर शलवारें आ गई, पजामे आ गई हैं। वो कल एक औरत कहने लगी, 2-1 दिन पहले कहने लगी कि हर बूढ़ी औरत ने भी पजामा पहन लिया, तो हरज तो कोई नहीं है पजामा पहनने में, है ना, हरे तो कोई नहीं है, इस्लाम मना नहीं करता, इस्लाम बहुत खूबसूरत दीन है, अल्लाह की बीवी जीनत को कोई हराम नहीं कर सकता, लेकिन ये कि हुदूद का ख्याल रखना कि लिबास हमारा ढीला ढाला हो, सतर के अहकाम को पूरा करता हो। बात फिर वही आती है कि अल्लाह को राजी रखना है, मैं जो भी पहन रही हूँ टाइट नहीं होना चाहिए, बारीक नहीं होना चाहिए, सतर के अहकाम को पूरा करने वाला, तो इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। तो पजामा पहन लें, शलवार पहन लें, पैंट पहन लें, क्योंकि शलवार और पैंट सेम है, जैसे शलवार है वैसे ही पैंट है। औरत के लिए ज़रा ढीली ढाली होनी चाहिए और कमीज़ हमारी थोड़ी लंबी होनी चाहिए कि हमारा सतर जो है ना वो महफूज रहे। तो बहरहाल सवाल ये है कि मेरे और आपके दिल में क्या आती है, और फिर ख़ास बात क्या है कि अंगूठी पहनी हुई हो, और फिर अब आम अंगूठी नहीं, डायमंड की अंगूठी, और फिर डायमंड बारीक बारीक नहीं, मोटा डायमंड, मोटा डायमंड होना चाहिए, बारीक बारीक, ये तो पता नहीं तराशे से है पुराना डायमंड, तो नया डायमंड मोटा डायमंड, गोल्ड नहीं वाइट गोल्ड, अब तो वाइट गोल्ड का फैशन आ गया ना। हर थोड़े दिनों के बाद पहली चीजें जो है ना हम उनको कंडम कर देते हैं कि अब ये मेरे काम नहीं आ सकती, तो सोफा पसंद नहीं आता, कपड़े पसंद नहीं आते, बर्तन कभी प्लास्टिक के बर्तन थे, कभी वो पीतल के बर्तन थे, फिर दूसरे बर्तन आ गए, फिर और बर्तन आ गए, फिर शीशे के बर्तन, तो चीजें यानी मैं और आप गौर करें कि दिल क्या चाहते हैं, दिल क्या कहते हैं। अच्छा आपको पता चला आजकल फलां जो है वो चीज का फैशन आ गया, आपस में हम क्या बात करते हैं, दिल किसकी याद से वो भरे हुए हैं। तो दिल एक है, जिंदगी एक है, रोटी एक है, उसको खुद खाऊं, बच्चों को दूं या परिंदों के आगे डाल दूं, पानी एक गिलास है, खुद पीऊं, बच्चों को पिलाऊं या उससे पौंद हों। तो देखना है कि पानी भी थोड़ा है, रोटी भी थोड़ी है, तो मेरी तरजीहात का तायुन क्या होगा, कहां इसका इस्तेमाल करूंगी। तो जिंदगी एक बार मिली है, एक चांस है, रब को राजी करना है, तो गैर जरूरी कामों में, गैर जरूरी मशागिल में अगर गुजार दिया तो रब को कैसे राजी करूंगी। फिर फरमाया वइन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफईनल अखियार, और बेशक हमारे नज़दीक हैं ये लोग, कौन, अल मुस्तफ़ैन, मुस्तफ़ा से है, और सफ़ो इसके मानी हैं कि किसी को किसी की पाकीज़गी की वजह से चुन लिया जाए, सफ़ो बाजी हम सब कहते रहते हैं, कौन सी बाजी, रफ़ो बाजी, सफ़ो बाजी, या कुछ भी नाम हम लोग किसी का भी रखते हैं, मुस्तफ़ा, तो किसी को किसकी नेकी और पाकीज़गी और तहारत की बुनियाद पर चुन लेना। आप जाती हैं, आप फ्रूट चुनती हैं तो उसके रंग की वजह से, उसके पके हुए होने की वजह से, फ्रेश होने की वजह से, तो हर चीज को हम चुनते हैं, कपड़े को और बर्तन को, फ्रूट को, सब्जी को, उसकी सरसब्ज होने की वजह से। लेकिन यहां पे अल्लाह ताला कहते हैं कि ये वो लोग जिनके दिल मेरी याद से भरे हुए थे, आखिरत की याद से, आखिरत की फिक्र से, दिलों में हर वक्त आखिरत की फिक्र रहती थी, रब को राजी रखने की फिक्र, तो ये वो लोग थे जो मेरे चुने हुए लोग थे। अल अखियार, खैर में से भी बेस्ट अखियार, सब के सब दी बेस्ट लोग थे, ये नहीं कि गुड थे, बेटर थे, दी बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। और फिर कहा सिर्फ इन्हीं का जिक्र ना करें, इस्माइल का जिक्र भी करें, वल यसा वजल किफल, और फिर इनका जिक्र, इनकी लंबी तफसीलात कुरान हदीस से मिलती है, वह कुल्लू मिन अल अखियार, सब के सब दी बेस्ट लोग थे, ये है मेरे और आपके रोल मॉडल। मैं और आप फिल्मी एक्टर पर, मॉडलिंग करने वाली औरत पर, खिलाड़ी पर, हम उसको पूछते हैं, नेम ब्रांड चीजों को पूछते हैं, वो हमारे बुत हैं। हाथ में फोन अगर आ जाता है और हो वो आईफोन, और अब नया फोन आ चुका है, हाथ में फोन हो और डायमंड की अंगूठी पहनी हो और फिर हमने ऐनक लगाई हो और फिर फैशन के मुताबिक, अब कौन से वो कपड़े, कौन वो कपड़े पहनता जो थानों से कटवा के बनते थे, अब तो वो कौन से ब्रीजा का है और आगा नूर का है और सफीना, हाँ और बोले, और वो भी फिर रेडीमेड कहते हैं, हाँ दर्जन ने सिया तो है, वो बात नहीं आती जो रेडीमेड में आती है, और वो कभी बिल्कुल बारीक सीना शुरू कर देते हैं तो हम वो ले लेते हैं, कभी वो बगैर शलवार के, हम कहते हैं चलो ये भी ठीक है, आज कुर्ता तो आप सिर्फ बगैर शलवार के रवाज है ना, तो जो वो पेश कर दे हमारे सामने हम कहते हैं कि हम वही हमारी हमें चीज है। बुरके मकसद पूरा नहीं करते हमारे जिलबाब हिजाब, कभी वो लंबी लंबी पिनों का एक जमाने में फैशन आया था बहुत, कभी सितारे और मोतियों के साथ वो यूं पिन लटक खुद इशारा करती थी मेरी तरफ देखो, ऐसे ऐसे कि मेरी तरफ देखो, हालांकि बुरका पर्दा या हिजाब जिलबाब पहने का मकसद क्या है कि हम पहचानी ना जाएं, कुरान में आपने पढ़ लिया कि पहचानी ना जाएं, लेकिन अगर हम बहुत उनको मोती सितारे कढ़ाइयां चीजें हत्या के सऊदीया चले जाएंगे। अब एक औरत बात और थी, कहने लगी सऊदीया में अब ऐसे ही मिलते हैं, तो सऊदीया हमारा रोल मॉडल नहीं है, बाजार हमारा रोल मॉडल नहीं है, हरम के अंदर भी सिलमा सितारा पे कढ़ाई किया हुआ अगर बुरका मिलेगा तो क्या हम कहेंगे हरम से मिल गया है। आंखें खोलनी है, दिल खोलना है, देखना ये रब क्या कहता है। तो उन्होंने क्या कहा कि वकुल्लु मिनल अखियार हाजा जिक्र, ये है जिक्र, ये है बात। और ये कौन थे, व इन्ना लिल मुत्तकीना लहुस्ना माब, ये सारे के सारे मुत्तकीन थे, अल्लाह से डरने वाले थे। तो मुत्तकी किसे कहते हैं, तकवा किसे कहते हैं? एक तो ये है कि तकवा की एक शेप है जो जाहरी तौर पर हमें नजर आती है, जैसे मैंने और आपने स्कार्फ लिया हुआ है, या मैं और आप नमाज पढ़ते हैं, या तस्वीर के दाने गिराते हैं, या मर्द शलवार टखनों से ऊपर बांध लेते हैं, दाढ़ी रख लेते हैं, मस्जिद में नजर आते हैं। लेकिन इसके बाद मेरी और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ कैसी है, मेरे और आपके मामलात कैसे हैं, लेन देन कैसा है, इमानत में खयानत तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते, गाली गलोच तो नहीं करते, दूसरों को काटते तो नहीं है। तो एक दफा कोई किसी की बहुत तारीफ कर रहा था, तो उमर फारूक रदी अल्लाह ने पूछा, और एक जगह आता है प्यारे रसूल ने पूछा कि क्या तुमने उनके साथ लेन देन किया है, उसने कहा नहीं। आपने पूछा क्या तुमने उसके साथ सफर किया है, कहा कि नहीं। तो कहा फिर तुम उसको कैसे जानते हो। जब किसी के साथ सफर करते हैं, जब किसी के साथ लेन देन करते हैं, जब किसी के साथ रहते हैं, फिर पता चलता है कि वो शख्स कैसा है। नमाजें अगर किसी नमाजें कोई पढ़ता है वो तो उसकी अपनी है, इबादात का शोभा। तो हमारा पूरा दीन जो है इबादात पर आकर जो है रुक नहीं जाता। तो अकायद, इबादात, इखलाकियात और मामलात, सब चीजें। तो मुत्तकी बनना, तो अल्लाह का ऐसा डर और खौफ इंसान गुनाहों से जो है वो दूर हो जाए, इंसान गुनाहों से जो है वो बचना शुरू कर दे। जैसे हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है के तीर अंदाज थे, बेस्ट तीर अंदाज, और सुन्नत है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, है ना। तो निशाना बड़ा पुख्ता था, कहते हैं बस दो दफा उनका निशाना जो था ना खता गया, ठीक जगह ना लगा। तो एक दफा क्या हुआ कि फरबर शहर से बाहर निकलकर जब तीर अंदाजी कर रहे थे तो एक पुल को उनका तीर जाकर लगा, ऐसी कुव्वत के साथ वो लगा कि वो जो पुल जो था ना वो थोड़ा सा उसको नुकसान हो गया, वो टूट गया, नुकसान हो गया, हिल गया। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो है उन्होंने अपने एक शागिर्द को वहाँ पे भेजा, और शागिर्द से कहा, अबू जाफिर नामी शागिर्द था, उसे कहा कि जाओ और इसके मालिक को ढूंढो और पूछो कि दो बातें हो सकती हैं, या तो वो हमसे पैसे ले ले जितना इसका नुकसान है वो बताकर, और या ये कि हमें इजाज़त दे दे हम इस पुल को ठीक करवा दें। तो इसके बाद गए शागिर्द जो थे अबू जाफिर नामी, तो मालिक का नाम था हमीद बिन अल अख़ज़र। पता चला कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह से ऐसे हो गया, तो वो उनका बहुत मोतकिद था, उसने कहा नहीं मैंने नुकसान को माफ़ कर दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत खुश हुए, तो शुक्राने में क्या किया, 50 अहदीस जो थी ना वो तलबा को और डिक्टेशन दी, 50 अहदीस, मूवी नहीं लगाई, इधर उधर बातें नहीं की, 50 अहदीस स्टूडेंट को और बता लिखवाई, और 300 दिरहम अल्लाह के रास्ते में सदका किया। अच्छा, हम मेरे और आपसे गाड़ी लग जाती है, हम गली में हैं, किसी से गाड़ी लग गई है, रोड पर हैं, कोई देख नहीं रहा, हम कहते हैं निकलो भाई यहाँ से, और खामोशी से जो है ना वो निकल जाते हैं, गाड़ी लग जाती है। उनसे भी पुल टूटा है, नुकसान हुआ है, लेकिन मालिक को ढूंढ रहे हैं। तो तकवा इंसान को क्या करता है, वो कदम उठाने से रोक देता है जो अल्लाह की नाफरमाने वाला, किसी का नुकसान करके, किसी के बच्चे को थप्पड़ लगा के, किसी का आईफोन उठा के, किसी के पैसे उठा के, किसी की गिबत और चुगली करके, फिर वो तेज तेज कदमों से इधर उधर नहीं, साइड पर नहीं हो जाता, बचता नहीं है, यूं नहीं कि इधर नजर छुपाई उधर नजर बढ़ाई और फिर ये कि दूसरों की इज्जत से खेलना शुरू कर दिया, किसी की तलाक दिलवा के। फिर इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कुछ सामान बेचना चाहते थे, तो जो ग्राहक आया उसने कहा कि मैं 5,000 दिरहम जो है ना नफा देता हूँ आपको, आपने जितने का लिया है मुझे बता दें, मेरे ऊपर इससे 5,000 दिरहम इतना ले लें। कहने लगे अच्छा यूं करो, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मुझे ना सोचने की थोड़ी सी मोहलत दे दो, कल मैं तुम्हें इसका जवाब देता हूँ। तो अगले दिन जब सुबह आए दुकान में बैठे तो एक शख्स ने आकर कहा कि मैं आपको 1,000 दिरहम देने को तैयार हूँ, एक और पार्टी आ गई, 1,000 दिरहम देने को तैयार हूँ। कहने लगे कि नहीं मैं 1,000 दिरहम नहीं ले सकता, मैंने रात को नियत कर ली थी, इरादा कर लिया था कि जो कल पार्टी आई थी ना उसको मैं ये सामान बेच दूंगा, तो अब मैं 1,000 दिरहम पर भी तुम्हें देने के लिए जो है ना तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी नियत और इरादा था, नियत की बात है, मैं और आप ये सुना कि औरतें रिश्ता तय कर देती हैं लड़के वाली खास तौर पे, और उसके बाद फिर रिश्ता फाइनल करके उनको होल्ड करके और फिर जो है उनके घर दावतें खा के और तोहफे ले लेके, तो उसके बाद जो है ना इधर और लड़की का पता कर रही हैं, उधर और लड़की का पता कर रही हैं, उधर तीसरी लड़की का पता कर रही हैं, और बाज़ औक़ात कोई और लड़की जो और मोटी या सामी हाथ आ जाए अगर, तो फिर जो है वो पिछली को ख़त्म करके तो फिर अगला रिश्ता जो है हम कर लेते हैं। तो चलो मोटी पतली छोटी को छोड़कर इतना ही हम देखें कि अगर हमें पता चल जाए किसी जगह किसी का रिश्ता चल रहा है और आगे तक चला भी गया है, और फिर रिश्ते पे रिश्ता डाला, सगी बहन भाई के बेटे का रिश्ता चल रहा है, बेटी का चल रहा है, वहां टाकर तो वो अपना चाहती है कि मेरी बेटी का हो जाए, है ना। नफसा नफसी है, बड़ी नफसा नफसी है, बड़ी सफाकियत आ गई है, बड़ी दुनियादारी आ गई है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हमारी नीयत और इरादा रात को ही हो गया था, अब हम आपसे ज्यादा नफा नहीं ले सकते। फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का एक शागिर्द थे अबू मासर अद-दरीर, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आपको पता है मशहूर मुहद्दिस, तो हदीस सुना रहे थे। जब हदीस सुना रहे थे तो शागिर्द जो थे, एक शागिर्द जो मैंने अभी नाम बताया अबू मासर, खुशी से ना झूमने लगे, और वो ऐसे खुशी से झूमे कि हाथ और सर हिलाने लगे। बाज़ औक़ात बाज़ लोगों के खुशी या गम का डिफरेंट अंदाज होता है, तो खुशी से जब वो झूमने लगे और हाथ और सर को हिलाने लगे तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अपने शागिर्द को देखकर हंसी आ गई, हंसी रोक ना सके। फिर उसके बाद अपने उस शागिर्द के पास गए और कहने लगे अबू मासर मुझे माफ़ कर दो। पूछा कि तुम मुझसे, आप मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हैं आप, तो कोई, कहने लगे कि नहीं, जब मैं तुम्हें हदीस एक दफ़ा डिक्टेशन दे रहा था, तुम हदीस लिख रहे थे, तो हदीस सुनकर तुम इतने खुश हुए और तुम अजीब तरीके से जो हाथ और अपने सर को हिला रहे थे तो मैं उस पर हंस पड़ा था, हंसी रोक नहीं सका था, और तुम मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारी उस हरकत पर जो हंस पड़ा था ना, इससे कहीं तुम्हारी दिल आजारी तो नहीं हो गई थी, तुम्हारा दिल तो नहीं टूट गया था। मैं और आप दिन रात हंसते हैं, उसने लंबी कमीज पहनी है, देखो छोटी का रवाज है, इसके तो बिल्कुल देहातन लगती है, इसका तो लगता ही नहीं कभी शहर में ये रही है, पढ़ी लिखी भी नहीं लगती, अच्छा ये डॉक्टर है, लगती नहीं है बिल्कुल, बात का सलीका नहीं है, बैठने का तरीका नहीं है, वो खाना खाते हुए प्लेट में कांटा और छुरी जो थी, नाइफ और फोक जो था, वो खाना खाने के बाद उसके भी एटिकेट्स है ना, कि जो नैपकिन है तो अगर वो नैपकिन जो है वो उसको तय किया हुआ है तो उसका रुख जो है वो तय किया हुआ, ये जो फोल्ड है ना ये इस तरफ होना चाहिए, यानी जो ये जो महल्लात में सिखाए जाते हैं, और ये जो है ऊपर होना चाहिए ताकि आप उसका अपना होंठ की लिपस्टिक साफ कर सके, है ना। तो अब जो है नैपकिन के आदाब हैं, खाना शुरू करते हुए वो नाइफ और उसको कैसे रखना है और ख़त्म करके कैसे रखना, इसके भी आदाब हैं। तो आवाज़ आनी चाहिए खाना खाते हुए कि नहीं, इसके भी आदाब हैं, सब चीज़ें। तो ये दुनिया में क्या आदाब आदाब चलते हैं ये मुझे और आपको सबको पता है, लेकिन खाना खाते हुए अल्लाह के नबी के आदाब क्या हैं, अल्लाह के नबी की सुन्नतें क्या हैं, मुझे और आपको कितना पता है, ये बहुत अहम बात है कि आखिर में अगर प्लेट में ज़रा सा भी कुछ रह जाता है तो वो बरकत है। तो बरकत अगर छोड़ देते हैं खाने के बाद में थोड़ा सा सालन थोड़ी सी चीज़, तो वो शैतान फिर उसमें शामिल हो जाता है, उस रहमत में उस बरकत में, खाना खाते हुए रहमत नाजिल होती है प्लेट के अंदर, तो बीच बीच में से नहीं, मतलब अंदर हाथ नहीं मारना चाहिए इस सलीके से तरीके से, और भी बहुत सी बातें आप सबको पता है। तो बहरहाल बात क्या हो रही थी कि तकवा किसे कहते हैं, तो तकवा जो है उसमें बहुत ज़रूरी है कि मेरे और आपके मामलात अच्छे हों। हम में से कितने लोग हैं जो कि गीबत को हराम समझते हैं, पता है आप लोगों को गीबत हराम है, वैसे ही हराम है जैसे सुअर का गोश्त हराम है, वैसे ही हराम है, है ना, ऐसे ही सूद भी हराम है। अच्छा कितने लोग हैं जो गीबत से, सूद से और चुगली से, बहतान लगाने से, झूठी गवाही देने से, मामलात ख़राब करने से बचते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब मैंने सुन लिया कि गीबत हराम है, जब से मुझे पता चल गया कि गीबत हराम है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों से, तो मैंने मा अक्तबतु अहदन कत्तु मुन्ज अलिमतु अन्नल गीबत हराम, तो मैंने उस वक्त से लेकर आज तक पूरी ज़िंदगी कभी किसी की गीबत नहीं की जब से मुझे पता चल गया ये हराम है। अगर किसी कोई आके उनका शागिर्द कहता था ना फलां आपके खिलाफ बातें कर रहा है तो उसको तोहफा भेजते थे, तो हम तो आग बगोला हो जाते हैं कि उसने पत्थर मारा है, ईंट मारूंगी जिसने मेरे बारे में ऐसी बातें की हैं, और पता है कि गीबत हराम है, मरे भाई का गोश्त खाना। फिर यही इमाम बुखारी थे जो दीन का काम करते हैं, आप में से कितने लोग हैं जो दीन की खिदमत करते हैं, कितने लोग हैं जो जन्नत चाहते हैं, कितने लोगों को जन्नत चाहिए, हम सबको जन्नत चाहिए, है ना, और कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं भी अच्छी बनूं, मेरे बच्चे भी अच्छे बने, और भी सारे कितने लोग हैं, हम सब चाहते हैं। तो जन्नत कितने लोग चाहते हैं, सब जोर से बोले, हम सब चाहते हैं कि अल्लाह तू हम सबको जन्नत दे दे, हम सब चाहते हैं कि अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, हम सब चाहते हैं कि इस सोसाइटी में यहाँ पे रहते हुए हम बहसियत एक मुसलमान के मेरा और आपका अच्छा किरदार हो। अच्छा, बात ये नहीं है कि मैं और आप, जैसे अभी शुरू में मैं बैठी थी, सवाल जो आपका सेशन चल रहा था, तो मेरी बहन ने एक सवाल पूछा कि बच्चों की तरबियत के बारे में, और अक्सर हम ये सवाल है हमारा कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कैसे करें। तो याद रखें कि बच्चे जो हमारे बच्चे हैं ना, इन पर तकरीर नहीं चलती, बच्चों पर तकरीर नहीं काम आती, हमारी ख्वाहिशात नहीं चलती, इनके सामने अमल की जबान जो है ना वो काम आती है। तो अगर जन्नत तकरीर करने से मिलती, और अगर तकरीर करने से बच्चे नेक और अच्छे बन जाते, तो सबको जन्नत मिलती और सबके बच्चे बहुत अच्छे होते। तो जन्नत तकरीर से नहीं मिलती, तो बच्चे तकरीर करने से, बातें करने से अच्छे नहीं बनते जब तक कि मैं और आप अमल अच्छा ना करें। मेरे और आपके बच्चे हमसे ज्यादा अच्छे हैं, वो बैठे हुए बात कर रहे होते हैं, हम गीबत कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग दूसरों की बातें कर रहे हैं, आप फूफू के बारे में ऐसे क्यों कह रहे हैं, आप खाला के बारे में ऐसे क्यों कर रहे हैं, मामा आपको क्या हो गया है, मामा आप फलां फलां की लड़की के बारे में आप कैसी बातें सोचते हैं, है ना, फलां के लड़के बारे में आपने ऐसा क्यों कहा, मामा आप कैसे हैं। यानी हमारे बच्चे, हमारे लोग आके आपस में, बार बार औरतें कहती हैं कि बच्चे हमें रोक रहे थे, बच्चे मना कर रहे थे। बच्चे जो है ना बेस्ट है, जो उनके दिल के अंदर है वो बाहर है, हिपोक्रेट नहीं है, उनकी लाइफ में कंट्राडिक्शन नहीं है, वो डरते नहीं है किसी से, हाय लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे रिश्ते, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, अच्छा पाकिस्तान में क्या होगा, इंडिया में क्या होगा। तो हमने दूसरों के डर से जिंदगी गुजारी है और जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है मुत्तकी कौन है, जिनके लिए लहुस्ना माब है, जो अल्लाह के डर से जिंदगी गुजारते हैं, मेरा रब क्या कहता है, फिर इनके लिए जन्नात हैं। और याद रखें यहाँ पे जन्नात जमा में इस्तेमाल हुआ है, कुरान मजीद में जन्नत के लिए 11 अल्फाज आए हैं, जन्नत के लिए जैसे 66 दफा जन्नत लफ्ज आया है, 66 दफा, और 69 दफा जन्नात आया है। तो पहला नाम जन्नत जन्नात हो गया, वाहिद भी है जमा भी है। दूसरा नाम दारुस्सलाम कहा अल्लाह ने, मुझे और आपको यहाँ पे लखपति भी हो, कोई करोड़पति भी हो ना, तो रात भर नींद नहीं आती, सोने की दवाई खा के वो सोता। बहुत अमीर लोग हैं, मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, किसी चीज की कमी नहीं है, दौलत के अंबार हैं, लेकिन सिस्टर नींद नहीं आती, सिस्टर बड़ी गम लेता है, बड़ी परेशानी, फलां का दुख, फलां का गम, और फालतू के पाले हुए गम। तो दारुस्सलाम दुनिया नहीं हो सकती, दारुस्सलाम जन्नत ही होगी। तो दूसरा नाम दारुस्सलाम है, तीसरा इसको दारुल खुल्द भी कहा गया। मैं और आप दुनिया में हमेशा रहना चाहते हैं, बहुत उदासी होती है कि अच्छा अब मैं 40 की हो गई, 50 60 60, मैं तो बस अब बूढ़ी हो गई, और लेकिन फिर भी काला रंग करते हैं, ऐसी चीजें इस्तेमाल करना चाहते हैं ये झुरियां ना पड़े मेरे और आपके चेहरे। फिर कहते हैं पता चला 30 साल की उम्र में अगर लगाते ना क्रीम तो फिर ये ना पड़ती अब जो है, या फिर ये कि इसको सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी करके तो इधर इकट्ठी कर ली सारी स्किन और फिर रुमाल बांध लिया। हम हमेशा जवान रहना चाहते हैं, हम हमेशा खूबसूरत रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी दौलत को कभी जवाल ना आए, हम चाहते हैं हमारे बच्चे कभी हमारे पास से ना जाएं। हम ये कहते हैं कि हाँ बच्चों की शादी करनी है, और लड़कियों की शादी करना चाहते हैं, लड़कों की शादी नहीं करना चाहते। अच्छा अक्सर माएँ कहती हैं कि बेटी का कोई रिश्ता बताएं, तो मैं कहती हूँ अच्छा आपका बेटा भी पढ़ा लिखा है तो अब उसका, तो कहती नहीं नहीं उसका नहीं, बेटों का जिक्र नहीं करते, लड़कियों का करते हैं। अच्छा बेटों की अगर शादी हो भी जाए तो बेटों को शेयर नहीं करना चाहते। एक माँ ने बेटे की शादी की और बेटे ही बेटे हैं, 5-7 बेटे हैं, 7 कमरों का घर खरीद लिया, एक बेटे को एक कमरे में, दूसरे को दूसरे कमरे में, भाई उसको अलग कर दो, अमीर हैं दौलतमंद हैं तो उनको अपनी लाइफ जीने दो। इस्लाम जो है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की इजाजत देता है, लेकिन बच्चा जवान हो जाए जब उसकी शादी करें तो अलग घर का कॉन्सेप्ट देता है, तसव्वुर देता है, दोनों बातों में फर्क है। तो बेस्ट क्या है कि शादी करते जाए अलग करते जाए, साथ साथ घर ले लें, बहुत मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती में वो जिस सारा दिन काम मैं करती हूँ, बहू को तकलीफ के साथ क्यों नहीं रहना चाहती, कमरे से निकलती क्यों नहीं है और काम क्यों नहीं करती, तो अपने गुलामी में क्यों रखना चाहते हैं। बच्ची घर में अपने शौहर के साथ तैयार हो, बेटा जो है वो गैर औरत के हुसन से अपनी आंखों को ना सेंके, है ना, तो उसको अपनी बीवी उसके घर में तैयार हो, जब घर में बहुत से मर्द होंगे बच्ची के लिए तैयार होना, उठना जागना सब चीजें, फिर आप सास बनकर ये नहीं कहेंगी सिंक पर बर्तनों से भरा हुआ है और बच्ची जो है ना फेसबुक पे बैठी है, तो आपको जलने कूड़ने की जरूरत नहीं है, वो सिंक भरा रहे, वो सिंक खाली हो जाए, वो बर्तन घर खाना पकाए, वो खाना उसका बाहर से आए, वो एक दिन में तनख्वाह खर्च कर दे, वो पूरे 30 दिन के बाद खर्च करे, वो बचत करे वो ना करे, उसको पता होना चाहिए कि आपका बेटा है मेरा बेटा है, तो मुझे अपने बेटे को मुझे बताना है कि बेटा मैं आपकी जिम्मेदारी हूं। अच्छा जब तो वो कमा रहे होते हैं हमें कोई फिक्र नहीं होती, कमा रहे हैं, कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, रातें कहा दिन का, इधर शादी की उधर उनकी निगरानी शुरू कर दी चौकीदार की तरह, टाइम कहाँ जा रहा है, खरीद क्या रहे हैं, आ रहे कहाँ हैं, जा रहे कहाँ हैं। और हम में से बहुत सी औरतें जो है अपने बच्चों की जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना उसमें जहर घोल देती हैं। तो आइए आज से अच्छी सास बने, मामलात अच्छे होने चाहिए मेरे और आपके। अपनी बेटी का क्या चाहते हैं, शादी नहीं की बेटी की, बेटी ने भी नहीं करवाई, रिश्ता तय था, बेटी डायरेक्ट मियां के पास जानी चाहिए, ससुराल में बिल्कुल नहीं चाहिए। दूसरी की बेटी मुलाजमा बनाकर लाते हैं, बीवी बनाकर नहीं लाते। तो अपनी बेटी के लिए जो चाहते हैं वो दूसरों के लिए जो है वो नहीं चाहते। तो मेरे और आपके लेने देने के बाट बहुत मुख्तलिफ हैं। तो आने वाली जो बहुएं हैं, एक पौधा है एक अलग जगह में जवान होकर मेरे घर के जमीन के अंदर उसको लगाना है, तो वो एक जवान पौधा बीज होता है ना, तो वो पल भर जाता है, माहौल को जल्दी ले लेता है, लेकिन नया पौधा जो है वो एकदम नहीं एक जगह पे जाके जमता नहीं लगता। तो उसके लिए मोहब्बत प्यार, एक आंख बंद कर लें, कभी दो भी करनी पड़ेंगी, है ना, उनको मोहलत दें, बेटी सो रही है तो दरवाजा बंद कर दें, बच्ची सो रही है, बहू सो रही है तो लो 12 बज गए ने उठना ही नहीं, नवाबजादी समझती है मैं अपनी माँ के घर में रहती हूँ, मुझे चाय नहीं दी। अच्छा एक और बड़ा मसला है, इधर सास बने नहीं उधर माजूर होके बैठ जाते हैं। कहाँ लिखा हुआ है, किस किताब में लिखा हुआ है कि जरा से बड़े होने के बाद काम नहीं करना, जिंदगी के आखिरी सांस तक काम करें। बेटी पे बैठी हुई है या सो रही है तो उसका तो नौक, बेटा चाय बन गई है, दम दे दिया है, बहू को कहते लो फोन करते हैं, अभी तक तुम्हारी जो है ना वो अंदर लेटी हुई है, बाहर नहीं निकली, मेरी खैरियत नहीं पूछी, मुझे चाय नहीं दी, मुझे नाश्ता नहीं दिया, रोटी इसको पकानी नहीं आती, इसने क्या घर बसाना है, देखूंगी ये बस जाता है घर, मुझे नहीं लगता ये लोग रहेंगे आपस में। तो खैर, तो बात ये है कि अच्छी सास बनना है। अच्छा दूसरी तरफ बहू को भी कैसा बनना है, अल्लाह का डर कि ये मेरे शौहर की जन्नत है, तनख्वाह अच्छी लगती है ना शौहर की, गाड़ी भी बड़ी अच्छी लगती है शौहर की, और अल्लाह जब शौहर के जरिए से बच्चे दे देता है तो जमीन पर कदम नहीं टिकते मेरे और आपके। और फिर अगर बेटे हो जाए, हम कहते हैं लो जी अब तो मेरे जड़ों तक पांव जो है ना मजबूत हो गए यहाँ पे, अब माँ भी कहती है फिक्र ना करना, अब अल्लाह ने तुझे बेटे दे दिए, एक नहीं दो तीन चार पांच देते ना, तो अच्छा अब क्या होता है उसके बाद, फिर उसके बाद हम कहते हैं ए मोटी जी पबरो। यानी मुझे हैरत होती है, सासें आती हैं तो रोती रहती हैं कि मेरी बहू ये करती है, ये ज्याती करती है, ये ज्याती करती है, दबाती नहीं है, चाय नहीं देती, नाश्ता नहीं करती, मेरे पास नहीं बैठती। मैंने कहा मुझे ये बताओ आपका बेटा आपके पास बैठता है, नहीं बेचारा। मैंने कहा वो क्यों बेचारा, बेटे की आप जन्नत है ना, तो बेटे को आपके पास बैठना चाहिए। अच्छा बेटा कुछ देता नहीं। अच्छा मैंने कहा जब कमा रहा था कितने साल कमाया, 5 साल कमाया। मैंने कहा देता तब भी नहीं देता था। मैंने कहा तब आपको शिकवा था, नहीं तब नहीं था। मैंने कहा अब क्यों शिकवा हो गया आपको। इसी तरह अब आप देखें दूसरी तरफ बहुएं क्या ज्यादती करती हैं, अब बहू को देख लेते हैं, मैं और आप बहुएं भी हैं, पहले बहू फिर सास ना, तो बहुएं क्या करती हैं, मैं और आप फिल्में देखकर, ड्रामे देखकर, मूवियां देखकर, एक्ट्रेस को देखकर। तो एक सास रोने लगी कि मेरे शौहर की कमाई तो ये सारी ब्यूटिशियन में दे देती है, नाई डोम उनको दे देती है, हम तो अब कहते हैं ना ब्यूटिशियन, वो नाई डोम कहते हैं, कहती है तनख्वाह नहीं है, मेरा बेटा मुश्किल से हमारे घर का गुजारा होता है, तो इसकी प्लकिंग और इसकी ये गैर जरूरी बाल, बालों को डाई कराना, ये सब चीजें दर्जन, ये सारा इसका जो स्टैंडर्ड है ये तो वहीं जाके सारी तनख्वाह दे आती है मेरे शौहर की, तो कैसे घर का गुजारा। और वो माँ सास सच बात कह रही थी, मैं जानती थी कि जो बात कह रही थी, कहती कि मैं भी अपने पास से देती हूँ फिर भी इस घर का नहीं चलता, और फिर भी मेरी बहू जो है ना खुश नहीं रहती। तो हम लोग नेचुरल लाइफ में नहीं रहते, घर में मशीन होनी चाहिए, उदड़ा सीना आना चाहिए, जैसे भी कपड़े थोड़े बहुत हों, अब फैशन हो गया है, यानी टीवी ड्रामा मूवी गिबत चुगली फजूलियात पर वक्त जाया करते हैं लेकिन अपने उधड़े को टांका नहीं लगाते, घर में पकाना नहीं चाहते, सीना नहीं चाहते। हमारी माओ ने ना घर में पैंपर थे, दर्जनों को कपड़े देने के हालात थे, और ना ही खाने बाहर से पककर आते थे, ना उनके शौहर उनको उस बहाने लेके जाते थे। पांच पांच सात सात बच्चे थे, बेस्ट तरबियत उन्होंने हमारी की, और हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आगे आप देखें कि हम जो है कितने आज के दौर में परेशान है, इसलिए कि हम आज अंदाज बदल गए, तौर तरीके बदल गए, क्वालिटी टाइम हम अपने बच्चों के साथ नहीं गुजारे, हमारा इखलाक किरदार वो नहीं है जो होना चाहिए। फारिग बैठे होते हैं, फिर एक दूसरे पे नजर रखते हैं, एक दूसरे की बातें करते हैं, एक दूसरे को गिराते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। तो मुत्तकीन, मुत्तकी, मुत्तकी बनना। तो बहू को हमेशा जिंदगी के आखिरी सांस तक ये याद रखना है कि मेरे सासुसर मेरे शौहर की जन्नत हैं, और मेरी शौहर की जन्नत नाराज नहीं होनी चाहिए, मेरे शौहर की जन्नत भूखी नहीं होनी चाहिए, मेरे शौहर की जन्नत रूठी नहीं होनी चाहिए, मेरे शौहर की जन्नत जो है प्यासी नहीं होनी चाहिए, और मेरे शौहर की जन्नत उसकी दवाई का टाइम है। अगर मेरे शौहर की जन्नत उसे रूठ गई, हर सुबह होती है जन्नत के दो दरवाजे खुलते हैं, दो माँ बाप, माँ या बाप, हर सुबह होती है जहन्नुम के दो दरवाजे खुलते हैं। तो घर में अपने माँ बाप हों या शौहर के वालदैन, तो जन्नत के दरवाजे मेरे और आपके लिए खुल सकते हैं अगर मैं और आप उनकी खिदमत करते हैं, उनको राजी रखते हैं। और अगर शाम होती है, तो अगर वो सुबह दिन सारा ऐसे हाल में गुजर गया कि वो दोनों हमसे राजी हैं, तो जन्नत के दरवाजे मेरे और आपके लिए खुले हैं, और अगर नाराज कर दिया तो फिर जहन्नुम के दरवाजे मेरे और आपके लिए खुल गए। और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। मतलब हमारे माँ बाप के पांच पांच सात सात बच्चे थे, लेकिन उन्होंने उनको बांटा नहीं था। हमारे दो माँ बाप होते हैं, सास ससुर हो या अपने, तो हम कहते हैं बेटी होती है तो वो कहती है कि बाजी तो करती नहीं है, कपड़े भी मैं ही अम्मी के इस्त्री करूं, अम्मी की ग्रोसरी भी मैं ही कराऊं। और भाई होते हैं, बेटे होते हैं, तो वो भी कहते हैं कि बड़ा भाई तो करता नहीं, छोटा भी नहीं करता, मैं ही रह गया हूं, मैं ही हूं। तो वालदेन जो है उनको बांट देते हैं। एक माँ एक दिन रो रही थी कि शौहर को एक बेटा ले गया, तो बीवी एक बेटे के पास है। बच्चों ने कहा है कि हम दोनों को इकट्ठा नहीं रख सकते, जिन्होंने सारी जिंदगी इकट्ठी गुजारी 25-30 साल, बच्चे संभाल नहीं सकते तो उनको अलग अलग कर दिया। तो सोचे इस बात पर। और ये दुआएं हैं जिन घरों में माँ बाप हैं, बूढ़े या दादी दादा या नानी नाना बुजुर्ग, जन्नत की हवाएं हैं, ये जन्नत की खुशबू है, ये जन्नत की जमानत है, ये जन्नत की जो है ये मुफ्त में जन्नत है जो मेरे और आपके पास है। जन्नत ऐसे नहीं मिलती, कुर्बानी से, मेहनत से। तो ये मुत्तकी लोग कौन होते हैं? तकरीरें नहीं करने वाले, सिर्फ दर्स देने वाले नहीं, अमल के मैदान में जो आगे बढ़ते हैं। तो फिर उनके लिए क्या है ये सूरत सात की आयत 50 में, कि उनके लिए जन्नत के दरवाजे जो हैं, जन्नाती अदनिन मुफत्ताहतन, उनके लिए जन्नत के दरवाजे ऑलरेडी खोले हुए हैं, जन्नत के दरवाजे जो हैं बीन हेल्ड ओपन ऑलरेडी, पहले से जन्नत के दरवाजे खोले हुए हैं। अच्छा, दरवाजे जो है ना दो तरह से, जैसे अभी मैं आई तो मैं पहले मेन गेट की तरफ आई, फिर मैंने वहां पे देखा कि नहीं इस तरफ से जाना है, मैं आई तो किसी ने दरवाजा खोल दिया है ना, एक ये तरीका है। दूसरा ये कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है कि बाद में आने वालों को इसमें तकलीफ ना हो। तो जब किसी का बहुत इंतजार हो, किसी को बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम किया जाए, तो ऑलरेडी उसका दरवाजा खोल कर जो है ना इंतजार किया जाता है। मुफत्ताहतन ये सब मफूल है, अगर ग्रामर आपको आती है ना, तो यहां पे ये नहीं कहा जा रहा कि उन जन्नतियों के ये मुत्तकी लोगों के आने पे जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी जन्नत के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं, आप इसकी जो लज्जत है ना उसको महसूस करें। एक होता है, एक है मुफत्ताहतन, तो ऑलरेडी जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं। तो अब आप देखें कि यहां पे जो है अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ऑलरेडी उनके लिए दरवाजे जन्नत के खोले हुए। फिर आगे मजीद जन्नत की जो है वो तफसीलात हैं कि वो क्या होगा। और एट दी सेम टाइम यहाँ पे फिर बताया कि ये आयत 55 में कहा कि तागीन के लिए बड़ा बुरा ठिकाना है, लशर्रा माप, तागीन, तागी, तुगयानी, समंदर की तुगयानी आपने देखी है ना, हैरिकेन आते हैं, तूफान आते हैं, इर्द गिर्द की बस्तियां, शहर के शहर बर्बाद हो जाते हैं। और जब दिलों में तुगयानी आती है तो फिरौन बनता है इंसान, जब अमलों में तुगयानी आती है तो फिर जो है नमरूद बन जाता है इंसान। और इसमें मुझे और आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि अल किबरू बतरुल हकी व गमतुन नास, किबर क्या है? हक का इनकार करना और दूसरों को हकीर समझना, है ना। तो फिरौन और नमरूद और हमान और मैं और आप हैसियत इंसान के बहुत मुतकब्बिर हो गए हैं। तो जिसके दिल में जर्रा बराबर किबर होगा वह जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तुगयानी, सरकशी, शैतान जो था वो क्या, कौन था उसके अंदर, वो भी किबर में मुब्तला हो गया था ना। वकाना मिनल काफिरीन, इस्तकबरा, उसने किबर किया, वकाना मिनल काफिरीन, उसने कहा मैं बड़ा हूं ना। تو تاغین جو ہے نا ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا. اچھا اس کے بعد ہم سورت زمر کی جو آیات ہیں اس میں آیت نمبر 66 سے لے کر اگر آپ اس کو اینڈ تک لے جائیں 75 تک تو یہاں پہ جنت کے دروازوں کا ذکر ہے, جنت اور جہنم دونوں کے دروازوں کا ذکر ہے. اور آیت 66 کا نچوڑ کیا ہے, پس اللہ کی عبادت کر, فللہ فعبد آرڈر کا صیغہ ہے, فعبد عبد عبادت کرنا. عبادت کے تین معنی ہیں, ایک تو پوجا پاٹ کرنا, پوجا پاٹ یعنی جس رکوع سجدہ, یا جیسے ہندو جو ہیں وہ اپنے مندر کے گرد چکر لگاتے ہیں, یا خانہ کعبہ کے گرد جس طواف کرنا, ایک تو یہ ہے جس پوجا پاٹ. دوسرے معنی کیا ہیں کہ جو ہے وہ عبادت کرنا. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو ماننا, آرڈر کو فالو کرنا شروع کر دینا, یہ بھی عبادت کے معنی ہیں. کہ جو اللہ ہمارا رولر ہے, حاکم ہے, اور ہم اس کے محکوم ہیں, ہم اس کی بندے ہیں, ٹھیک ہے. تیسرے اس کے معنی یہ ہیں, جیسے آپ کے گھر میں جو نوکرانی کام کرتی ہے, ملازمہ کام کرتی ہے, تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو فالو کرے, لیکن وہ یہ کہتی ہے 10 کام میں نے کر لی ہیں, بارہواں نہیں کروں گی, تیرہواں نہیں کروں گی, چودہواں نہیں کروں گی, ایسا نہیں ہے. عبادت کے معنی کے اندر تیسرا معنی آتا ہے نوکری اور غلامی. ایسے عبادت کرنی ہے کہ زندگی بھر کی غلامی. پھر ابراہیم بن ادم جو تھے بازار گئے ایک نوکر خریدنے کے لیے, تو نوکر سے پوچھا کہ یعنی نوکر بکتے تھے اس زمانے میں, لوگ بکتے تھے, غلام بکتے تھے, تو پوچھا کہ تمہاری قیمت کیا ہے, تمہارا نام کیا ہے. کہا حضرت غلام کی کیا حیثیت ہے, جس بھی نام سے چاہے پکار لے. کہا کھاؤ گے کیا, کہا جو بھی دے دیں, پہنو گے کیا جو بھی پہنا دیں. یعنی ہر بات وہ کہہ رہا تھا میں نوکر ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, جہاں رکھیں گے جو کھلائیں گے جو پہنائیں گے جو پیسے دے دیں اور مجھے لے جائیں. تو یہ ہے ایک نوکر اور غلام کی حیثیت. تو ابراہیم بن ادم رونے لگے, کہنے لگے افسوس کہ تجھے اپنے آقا کی اس طرح غلامی نہ آئی جیسے اس نوکر کو اپنے آقا کی غلامی کرنی آتی ہے. محمود غزنوی کا نام آپ نے سنا ہوگا, اپنے ایک نوکر سے بہت عزت کرتے تھے, محبت کرتے تھے, ایاز نام تھا. باقی درباری جلتے تھے, حسد کرتے تھے کہ اس کی آپ بہت اہمیت ہے. تو پھر ایک دن ایک ہی کہنے لگے, سارے لوگوں کو بٹھایا, اپنے وزیروں کو, مشیروں کو, کہنے لگے کہ جو ہمارے خزانے کا سب سے قیمتی ہیرا ہے نا وہ لایا جائے. جب وہ قیمتی ہیرا آیا تو اس کے بعد جو ہے ایک ایک وزیر کو کہا اس کو توڑ دو. تو ساروں نے بڑی تعریف کی کہ بہت قیمتی ہیرا ہے, ہمارے بادشاہ کی وجہ سے, ہمارے آقا کی وجہ سے اتنا قیمتی ہیرا ہمارے خزانے میں ہے, لیکن توڑنے سے انکار کر دیا. جب ایاز کو سامنے دیا, ایاز کو کہا یہ لو ہیرا اور اس کو توڑو, تو ایاز نے پتھر لے کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. سارے باقی لوگ جو تھے قریب تھا کہ اس کو مارنے کے لیے دوڑتے کہ تم نے اتنا نقصان کر دیا. تو اس نے ایاز نے ایک بات کہی, میں نے ہیرا ضرور توڑا ہے لیکن اپنے آقا کے حکم کو نہیں توڑا, آقا کے حکم کی اطاعت کی ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری عبادت میں کیا آتی ہے کہ پوجا پاٹھ, یعنی میں نے اور آپ نے ثقاف تو اوڑھ لیا, میں نے اور آپ نے برقع تو پہن لیا, لیکن اندر کیا ہے, میرے اور آپ کے معاملات کیسے ہیں. قرآن کی کلاس میں جاتے ہیں, درس میں دیتی ہوں, مسجد میں وہ ایک عورت دو چار دن پہلے رو رہی تھی کہ بچی کو طلاق ہو رہی ہے, تو ہم نے تو پوچھا تھا, میں نے پتا کیا تھا, ہاں لوگوں نے کہا تھا یہ مسجد میں جاتا ہے, لڑکا نماز پڑھتا ہے, لیکن اندر تو وہ ڈرگز لیتا ہے, اندر تو وہ شراب پیتا ہے, اور اس کے اور برے حالات ہیں, اور اب میری بیٹی جو ہے گھر واپس آ رہی ہے. تو یعنی اصل چیز یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں مجھے اور آپ کو ٹھیک بننا ہے, نوکری اور غلامی, اپنی حیثیت کو نہیں بھولنا, اللہ میرا آقا اور میں اس کی بندی. تو فعبد آرڈر کا صیغہ ہے, کوئی رعایت نہیں ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے, چاہے تو اچھے مسلمان بنے چاہے تو نہ بنے, بننا ہی ہے. وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ, اور شکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت شکر کرنے والوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں, قلیل من عبادی الشکور. سورت سبا میں ہے کہ میرے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. تو آئیے شکر گزار بنے, مجھے اور آپ کو اللہ نے بہت نوازا ہے. ہم اچھا شکر کا مطلب یہ نہیں ہے جو میں اور آپ خیریت پوچھتے ہیں تو الحمدللہ, یعنی امی نے خیریت پوچھی کیا حال ہے, منہ سے الحمدللہ. اور ایک ہوتا ہے یعنی آپ سوچیں کہ میرے بیٹے کی جب ڈیتھ ہوئی تو ڈیتھ کے موقع پہ الحمدللہ کہنا, اور پھر میں اس دن یعنی मैं दो दो तीन दुआएं याद की हुई हैं जो डेथ के मौके पे मैं पढ़ती थी. मेरी रूटीन है कि जब किसी के भी कोई डेथ होती थी तो मैं मगफिरत की वो दुआएं पढ़ती हूँ जो प्यारे रसूल ने पढ़ी हैं. तो मैं चाहती हूँ कि मसनून तरीके से मगफिरत करूँ. इसी तरह मैंने इयादत की भी कुछ दुआएं दो तीन याद की हुई हैं कि एटलीस्ट इयादत मसनून तरीके से करूँ. तो जब मेरे अपने बेटे की डेथ हुई तो वो दो तीन दुआएं पढ़ने के बाद मैंने कहा नहीं, मुझे और दुआएं भी याद करनी है. मेरा दिल चाहता था मैं और दुआएं पढ़ूं. देखे ना, अपनी अपने अंदर जब चोट लगी तो मेरा मायार क्या था, मैं चाहती थी मैं और दुआएं भी पढ़ूं अपने बेटे के लिए ना. और वैसे भी आमतौर पर भी मैं किताब खोल के भी वैसे पढ़ती हूँ. और उसके बाद जाहिर है कि डेथ थी, एक्सीडेंट था, जल गया था सब कुछ, तो नहीं मिल रहा था कुछ भी. तो एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, तीसरे चौथे पांचवें दिन तो मैं अल्लाह ताला से क्या कहती कि अल्लाह ताला अगर मेरे बेटे की जो भी तेरी इमानत थी तेरे पास है, जिस हाल में भी है, वो मुझे जो भी मिल जाए तो बस मैं उसको ना मिट्टी उसको मैं दे दूँ ना, कब्र के अंदर उसको हम डाल दें. तो और मैं कहती थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. फ़ोन आता था, कहती थी अब पुलिस वाले फिर क्या कहते हैं कि बेटा मुझे फिर मेरा दे देंगे, है ना. तो एक अल्हम्दुलिल्लाह पैसे. और जिस दिन उन्होंने कहा कि हाँ मिल गया है, ऐसे ही लगता था शायद कल जनाजा हो जाएगा, परसों जनाजा हो जाएगा, तीसरे दिन हो जाएगा, चौथे दिन. तो जब वो उन्होंने कहा कि हाँ मिल जाएगा तो मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है ना, कि मेरे बेटे को मिट्टी नसीब हो गई, है ना ये बात. और फिर वो औरत जिसके दो बेटे डूबकर फौत हुए थे, अपने बेटे के जनाजे के दिन मैंने उसको बहुत प्यार किया, मैंने उसको बहुत प्यार किया. मैंने कहा अल्लाह ताला तूने बस मेरा एक लिया, इसके तो दो जवान बेटे एक वक्त में गए, एक वक्त में. और जब उनका जनाजा उठा तो कह रहे हैं कि वो रो रही थी, कहती थी हमजा मैं तुझे रोऊं, दूसरे का नाम लेके कहती थी कि मैं तुझे रोऊं, मैं किसको रोऊं, इतनी मोहलत भी नहीं है कि मैं अलग अलग करके रो लूं. दोनों जनाजे जवान बेटे 22-21 साल के इकट्ठे जनाजे उठे. तो मैंने कहा मेरा तो एक बेटा गया है, एक मेरे सामने मौजूद है अभी, अल्लाह चाहता गाड़ी में हम सभी बैठे होते. और फिर दिल में हूक उठती है, हवाएं चलती हैं, मौसम बदलते हैं, दिल उदास रहता है ना. तो ये क्या, ये इंसान की फितरत है. तो लेकिन अल्लाह के फैसलों पर राजी रहना. एक औरत कहने लगी तो कुछ दिन पहले आकर कहने लगी बाजी मेरे शौहर जॉब पर गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी जॉब ख़त्म कर दी, तुम्हारी जॉब ख़त्म है, आज के बाद तुम नहीं आओगे. ऐसे लगता था मेरे शौहर को हार्ट अटैक हो जाएगा. तो उन्होंने कहा कि मेरी तो बीवी छोड़ कर गई है. तो कहने लगे कि टैक्सी के ये पैसे हैं, टैक्सी लेके आप चले जाए, बस अभी आप चले जाए. तो कहने लगी हार्ट अटैक हो सकता है. तो जवान बेटे की डेथ की खबर पुलिस आकर दे दे, शौहर की जॉब चली जाए, आपका पर्स है जिसमें हजारों डॉलर हैं, अचानक आपको पता चलता है आप बिल देने लगे तो वो किसी ने उठा लिया है, चोरी हो चुका है, आपके पास नहीं है, आपका जेवर आपके घर से अल्लाह ना करे पता नहीं चला और आप निकल कर गए और किसी को पता चल गया. एक स्टूडेंट बता रही थी कि बैक डोर से लोग आए और वो जेवर और डायमंड उनको सब पता था, सब चीज़ें चुन चुन कर उठा कर ले गए. तो जेवर चले जाए, नई गाड़ी जो हजारों डॉलर की 0 मीटर गाड़ी दिसंबर के आखिर में बुक हुई, जनवरी में आई, फरवरी के फर्स्ट वीक में 7 फरवरी को बेटे की डेथ की खबर और बेटा भी साथ, है ना. और बेटी तलाक होके घर आ जाए, शोहर की डेथ हो जाए, बेटे की डेथ की खबर तो मिली, फिर भाई के डेथ की खबर मिली और वो भी रोड एक्सीडेंट में, है ना. तो ये इत्तलात मिलती रहती हैं और ऐसे मौके पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, फिर उम्मे सुलैम बन जाना और फिर याकूब अलैहिस्सलाम बन जाना और फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम बन जाना. तो मेरी प्यारी बहनों, कुरान बहुत खूबसूरत है, तिलावत मैं और आप दिन रात करते हैं, लेकिन आइए दिल की दुनिया कुरान के जरिए आबाद करें, आइए अपने अमलों को खूबसूरत बनाएं, आइए अपने मामलात को खूबसूरत बनाएं, आइए मरने के बाद अपने लिए अच्छी गवाहियां जमा करें. पड़ोसन के घर में बेटियां हैं, उनके लिए दुआ करें कि अगर रिश्ता नहीं आ रहा, अगर रूट कर आई हुई है तो कोशिश करें कि सुलह हो जाए, ना कि दूसरों को बताते फिरें कि वो 2 माह से साथ की जो पड़ोसन है ना बेटी आई हुई, लगता है बसेगी नहीं. मुझे तो पहले ही लगता था, इनका तो पहले ही ऐसे ही लगता था. तो मैं और आप बातें करके दूसरों के ऐब गनवा कर अपना वक्त मैं और आप जाया ना करें. پھر اس کے بعد رکوع من الشاکرین اور شکر کرنے والے بن جائیں، پھر ساری آیتوں میں سے آپ گزریں. تو ہم آگے بڑھتے ہیں، سورۃ زمر کی آیت نمبر 71 کو دیکھیں. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ ان کو گروہ میں جہنم کی طرف لوگوں کو لے کے جایا جائے گا نا. سیقہ کا مطلب ہے کہ کسی کو کہنا کہ جلدی جلدی چلو، ایک ہوتے نا آرام سے گزرنا، نہیں، ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. اور پھر یہاں پہ یہ ہے، اللہ کی مرسی دیکھیں، اللہ کا رحم دیکھیں. حتی اذا جاؤوها، جب وہ جہنم کے پاس آئیں گے، جہنم مؤنس ہے تو ہا کی ضمیر آئی ہے، فتحت ابوابها، اب اس کے دروازے کھولے جائیں گے. یہاں پہ یہ نہیں آیا، یہاں پہ وہ لفظ نہیں آیا مفتحتن، پہلے سے ہی کھول کے رکھے گئے، نہیں، دو ہی دفعہ جہنم کے دروازے کھولیں گے، ایک دفعہ کسی کے داخل ہوتے وقت یا کسی کو نکالتے وقت. تو اب جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے پہلے سے یہ تمام سے جنت کے دروازے کھول کر رکھ دیے گئے ہیں. اور پھر وقال لهم خزاناتها، اور اس وقت ان کے جو خزانچی ہوں گے، نگران ہوں گے، وہ ان سے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم، الم یاتکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے تھے، کیا تمہارے پاس ایسے کوئی لوگ نہیں آئے تھے، کوئی رسول نہیں آئے تھے، اللہ کے پیغمبر نہیں آئے تھے تمہیں رب کی آیات پڑھ کر سناتے. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور آج کے دن سے جو ہے نا، اس دن سے پہلے تمہیں ڈراتے. تو اس وقت یہ فرشتے ان سے پوچھیں گے، تو وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، اب اللہ کے عذاب کا فیصلہ انکار کرنے والوں پر ثابت ہو جائے گا. اس وقت ان سے کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہ تم جہنم کے دروازوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. فبیس مثوى المتکبرین، اور کبر کرنے والوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے. تو کبر کا خاص ذکر ہے، کہتے ہیں کہ متکبر کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، کیسے پتا چلے کہ میرے اور آپ کے اندر کبر ہے؟ دوسروں کے مشورے کو قبول نہ کرنا، اپنی رائے کو اہمیت دینا، ہمیشہ چاہنا روٹھیں تو دوسرا ہی منائے، کبھی یعنی دوسرے کو نہ منانا، اور چلتے ہوئے آگے آگے رہنا، کھانا مجھے پہلے ملے، بیسٹ سیٹ میرے لیے ہونی چاہیے، یعنی اپنے آپ کو اہمیت دینا. یہ سب یعنی اگر میں یہاں پہ آئی ہوں تو جہاں بھی مجھے سیٹ مل جائے، الا یہ کہ اہل خانہ مجھے اگر کوئی سیٹ اہتمام سے دے دے تو ٹھیک ہے، خود چاہنا بیسٹ بوٹی مجھے ملے. اب تو بوٹیوں کا مسئلہ نہیں، وہ رلتی رہتی ہیں، ہے نا، لیکن اگر امی نے، ہم پاکستان گئے یا یہاں پہ کپڑے آئے ہیں تو بیسٹ کلر میں نے لینا ہے، بیسٹ جوڑا میں نے لینا ہے، باپ کی جائیداد بٹ رہی ہے تو بیسٹ کارنر کا پلاٹ مجھے چاہیے ہے، ماں باپ چیزوں کی جو بھی تقسیم ہو رہی ہے تو بیسٹ امی کا زیور مجھے چاہیے، ہر چیز بیسٹ مجھے چاہیے، دنیا یہ دنیا ہے. اچھا اگلی آیات کو اگر آپ دیکھیں 72-73، تو جنتی جو جنت میں جو لوگ لے کے جائے جائیں گے، سیقہ اتقوا ربہم، جنہوں نے ساری زندگی متقی بن کر گزاری تھی، اپنے معاملات اچھے کیے تھے، اور وہ جنت کی طرف گرو در گرو لے کے جائے جائیں گے، وہ بھی گرو ہوں گے، یہ بھی گرو ہوں گے. اور جب حتی اذا جاؤوها، جب وہ اس کی طرف جنت میں پہنچیں گے، وفتحت ابوابها، تو اس کے دروازے کھول لیے جائیں گے. تو سورۃ سواد میں ہم نے پڑھا مفتحتن، تو یہاں پہ فتحت. اب وقال لهم خزاناتها، اب خزانچی کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، اب تمہارے لیے پیس ہے، سلامتی، رحمت، اور طبتم، طیب سے ہے، بہت اچھے ہو تم. ہم کسے اچھا کہتے ہیں؟ جس کے پاس جو ہے آئی فون ہوتا ہے، جس کا رنگ خوبصورت ہوتا ہے، سفید رنگ، گورا چٹا رنگ، جس کا قد بہت اچھا ہوتا ہے، جس کے کپڑے بہت اچھے ہوتے ہیں، نیم برانڈ ہوتے ہیں، جو اپنے گھر میں رہتی ہے، ہم کہتے ہیں کتنی اچھی ہونا تم، کتنی خوش قسمت ہونا تم، تمہارے بچے سب ڈاکٹر بن گئے، سب انجینئر بن گئے، اپنا گھر ہے، سب ادھر پہنچ گئے. تو ہم کسے کہتے ہیں؟ طب تم بہت اچھے ہو. وہ لوگ ان کو کہیں گے طب تم، جو جنت میں پہنچ جائیں گے، جن کے لیے جنت کے دروازے کھولے ہوں گے، پھر ان کو کہا جائے گا اس میں داخل ہو جاؤ. تو آخری آیتوں میں کیا ہے کہ وہ الحمدللہ کہیں گے، اور پھر آخری بات بھی یہی ہے، الحمدللہ رب العالمین. اچھا جنت اور جہنم کے حدیث سے ہمیں کتنے دروازے پتہ چلتے ہیں؟ 7 دروازے پتہ چلتے ہیں. اس میں جیسے ایک انفاق کا ہے، ایک جہاد کا ہے، ایک صیام کا ہے، یعنی جو صدقہ کرتے تھے تو ان کو جنت کے ایک دروازے سے وہ داخل ہوں گے. پھر ایک جہاد، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی خدمت کرنا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، بدی سے منع کرنا، اور پھر جہاد کے مختلف درجے ہیں. پھر اہل صیام ہیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جو جنت کے ہر دروازے سے داخل ہو سکے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر میں سمجھتا ہوں کہ تو ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہے جو جنت کے ہر دروازے سے داخل ہو سکے گا.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ چاندنی رات تھی، رسول اللہ کا سر میری گود میں تھا، تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ آسمان پر بہت سے ستارے ہیں، تو میں نے پیارے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کوئی ایسا بھی خوش قسمت ہوگا کہ جس کی نیکیاں یہ ستاروں کے برابر ہوں؟ تو کہنے لگیں کہ پیارے رسول نے فرمایا ہاں حضرت عمر ہوں گے۔ تو آپ لوگ بہت حیران نہیں ہو رہے؟ ہاں، تو وہ بھی بہت حیران ہوئی، کہنے لگی کہ حضرت اگر عمر ہوں گے تو ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ فوراً ذہن میں آتا ہے کہ ابو بکر آپ کہیں گے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ تو ابو بکر کا مقام تو اس سے بھی زیادہ اونچا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہت سی خوبصورت باتیں ہیں، اور ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ من اصبح منکم الیوم صائما؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا انا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ آج جنازے میں کس نے شرکت کی؟ فمن تبع منکم الیوم جنازہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا انا۔ پھر آپ نے، یعنی میں۔ پھر آپ نے پوچھا آج محتاج کو کھانا کس نے کھلایا؟ فمن اطعم منکم الیوم مسکینا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یس میں، انا۔ پھر آپ نے پوچھا فمن عاد منکم الیوم مریضا؟ مریض کی عادت آج تم میں سے کس نے کی؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا انا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، جس میں یہ چار چیزیں جمع ہو جائیں تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو میری پیاری بہنوں، جنازے میں شرکت کرنا، غریب مسکین محتاج کو کھانا کھلانا، بیمار کی عیادت کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے روزہ رکھنا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یعنی عبادات کے ساتھ دیکھیں، عبادت ایک کا ذکر ہے، اور تین جو ہیں معاملات کا ذکر ہے، اخلاق کا ذکر ہے۔ تو اخلاق اور معاملات کے ساتھ جنت کے دروازوں میں ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اور بھی بہت سی اس میں مثالیں ہیں۔ ایک بات میں اپنے آپ سے اور کہہ سکتی ہوں، ایک تو یہ نا کہ انشاءاللہ مجھے اور آپ کو قرآن سے دوستی کرنی ہے، دل کو قرآن سے آباد کرنا ہے، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں، بڑی بڑی سنتیں، جو میں اور آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک بات جو بڑی مجھے خوبصورت لگتی ہے، امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ بہت بڑے محدث تھے، ایک دفعہ ایک سمندر کے کنارے پر کھڑے تھے، تو جو ان کا جہاز تھا نا، جو سمندر کا جہاز، کوئی ڈیڑھ فرلانگ پر تھا، یعنی ڈیڑھ میل کے فاصلے پر تھا۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ وہ رسی اور اس طرح، کیونکہ پانی کنارے پہ کم ہوتا ہے نا، تو جہاز سمندری، وہ جو جہاز تھا وہ تھوڑا سا دور تھا۔ تو آپ کنارے پہ کھڑے تھے، اور آپ کو جو ہے وہ آواز آئی۔ کس چیز کی آواز آئی؟ چھینک کسی کے مارنے کی آواز آئی۔ تو اب چھینک مارنے والے کی آواز اونچی تھی، تو اس نے چھینک مار کے الحمدللہ کہا۔ اب ان کو کیا کہنا تھا؟ چھینک کسی کی آواز سن لے تو کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ اب ایک شخص مسجد میں ہے اور بازار میں کسی کو آواز آئی، تو ممکن نہیں ہے نا کہ وہ جا کے جواب دے گا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ واجب تو نہیں تھا، میل ڈیڑھ میل کا فاصلہ تھا، ایک کشتی آ رہی تھی، کشتی آئی، 3 درہم کشتی والے کو اس زمانے میں دیے، کشتی پر بیٹھے، جہاز میں پہنچے، اور وہاں جا کر کہا یرحمک اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ اس وقت کشتی میں غیب سے لوگوں نے یہ آواز سنی کہ اے ابو داؤد، تم نے 3 درہم میں جنت جو ہے وہ خرید لی۔ کہنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، جیسے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کروایا، ابو داؤد آج آپ نے 3 درہم میں جنت خرید لی۔ تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں، کسی کو مسکرا کر دیکھیں، کسی کے آنسو پہنچ دیں۔ بعض اوقات ہم کسی کی پیسے سے مدد نہیں کر سکتے، لیکن اس کی باتیں سن کر اس کے دل کا غم تو ہلکا کر سکتے ہیں، اس کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، اس کی جو باتیں ہیں اس کی حفاظت کریں، راز کی حفاظت کریں، اس کے لیے دعا مانگنے شروع کر دیں۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں میرے اور آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول سکتی ہیں۔ اور آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جنت کا سفر زندگی بھر کا سفر ہے۔ یعنی ہم لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ دسمبر کے آخری مہینے کی آخری تاریخ رات 11 بجے سے لے کے 12 بجے تک جو عبادت کرے گا تو پورا سال عبادت ہوگا، یا 2 نفل پڑھ کے قضا عمری، یا شارٹ کٹ۔ تو ایسا نہیں ہے۔ محمد علی جو کہ باکسر تھے، اور محمد علی آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں ان کا انتقال ہو گیا، تو ایک دفعہ جب وہ چیمپئن بنے تو ان کو $50,000 انعام ملے۔ تو اس وقت کسی نے جو ہے یہ ایک بات کہی کہ یہ بڑی اس کی خوش قسمتی تھی کہ محمد علی جو ہے وہ جیت گیا, لک تھی اس کی کہ جیت گیا اور چیمپئن بن گیا. تو کہتے ہیں محمد علی کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہنے لگا کہ ایک پنچ بنانے کے لیے, یہ ایک مکہ جس نے مجھے جتایا ہے 21 سال لگے ہیں مجھے اس کو بنانے میں, ایک مکہ بنانے میں 21 سال لگے ہیں. گول روٹی بننے میں بہت مدت لگتی ہے, گاڑی جو ہے وہ یعنی بغیر ٹکٹ کے اور سیدھے طریقے سے اور جی تک آپ پہنچ جائیں مدتیں لگتی ہیں. شادی کی زندگی 20 سال کی, 25 سال کی, 30 سال کی زندگی صبر اور شکر سے گزارنے میں وہ عورت ہی جانتی ہے. مردے کا حال جو ہے یا قبر کا حال مردہ جانتا ہے, اور بیوی جو ہے وہ شوہر کا حال جانتی ہے نا. اندر والے کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا میں ڈوبی اور کتنا میں روئی اور کن مسائل سے میں گزری. تو میری پیاری بہنوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آئیے یہ فیصلہ کرتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں اور یہ ول پاور اور یہ اپنی زندگی کے لیے کہ ساری زندگی اللہ کی بندگی کرنی ہے, ساری زندگی اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کرنی ہے, اور اے اللہ تو کسی چھوٹی سی بھی میری نیکی کو قبول کر کے وہ اسے جنت کے اندر داخلہ دلوا دینا. اور جنت کتنی خوبصورت ہے, وہ کتنی بڑی ہے, جنت کے جو دروازے ہیں وہ کیسے ہیں, اس کی مٹی جو ہے وہ کستوری کی ہے, اس کا خیمہ جو ہے وہ ہیرے کو تراش کے بنایا جائے گا, اور وہ ہیرا جس کو تراش کے اس کا خیمہ بنایا جائے گا اس کی لمبائی 60 میل ہے. جنت جس کے دو جیسے دروازے کی دو چوکتے جو ہیں نا ان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے نا 1250 کلومیٹر کا ہے. وہ جنت جس کی وسعت آسمان و زمین سے بڑھ کر ہے, وہ جنت جس کے دو درجوں میں جو ہے وہ اتنا فرق ہے جتنا آسمان زمین کے درمیان فرق ہے, اور جس کا سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ جنت الفردوس کا ہے, اور وہ جنت جس کی عمارتیں جو ہیں جس کو اللہ تعالیٰ محلات کے نام سے یاد کرتا ہے, مساکن, اور بہت سے اس کے برتن اور پیالے اور آبشاریں اور نہریں. تو اس جنت کا میں, اس جنت کے میں اور آپ مطمئنی ہیں, اس کے خواہش مند ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم کو جنت کے دروازوں میں, دی گیٹس آف پیراڈائز, اس میں داخل ہونے کی توفیق عطا کرے. تو دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین. اے میرے رب, اے رحمان اور رحیم آقا, اے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے میرے رب, ہم سب کے رب, سب مسلمانوں کے رب, تو ہم سب سے راضی ہو جا. یہ دل نادان ہے, یہ دل بڑا بھولا ہے, بہت جلدی شیطان کی چالوں میں آ جاتا ہے, بہت جلدی نشکری کے کلمات زبان پر آ جاتے ہیں, بہت جلدی اداس ہوتے ہیں کہ بہت چیزوں میں محرومی ہے, آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. اے اللہ, تو کبھی ہمارے یہ دنیا کے لیے جو بہنے والے ہیں آنسو ہیں, تو کبھی ان پہ ناراض نہ ہو جانا. زبان سے جو نشکری کے کلمات نکل آتے ہیں بھولے بسرے سے, بھول کر ایسے ہی نادانی میں, تو کبھی اس پہ ہماری پکڑ نہ کرنا. یہ زبان جو تیری نافرمانی میں چلتی ہے, کبھی غیبت اور کبھی چغلی اور کبھی بڑے بول اور کبھی کبر اور کبھی حسد اور نہ جانے کون کون سی خطرناک بیماریاں لگی ہوئی ہیں ہمیں, اے ہمارے رب تو ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق دے دے. کہ تو نے, تیرے پیارے رسول نے فرمایا کہ اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو, زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت, تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اگر تم مجھے زبان کی حفاظت اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو, تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. اے میرے رب تو ہمیں جنت دے دے. ہم بہت گناہگار ہیں, اب تک کی زندگی میں بڑی کوتاہیاں ہو گئیں, بڑی نافرمانیاں ہو گئیں, چھوٹی چھوٹی غلطیاں, بڑی بڑی غلطیاں, چھوٹے چھوٹے گناہ, بڑے بڑے گناہ. والدین کو کبھی ستایا, کبھی ان کا دل دکھایا, کبھی ان کے سامنے بولے, اپنے والدین پھر شوہر کے والدین. اور اے میرے رب تو ہم سے کبھی روٹنا نہ, تو ہم سے راضی رہنا. اے ہمارے رب تو ہم سے مان جا. یہ برہنگیا کے مسلمان, یہ برما کے مسلمان, کشمیر کے مسلمان, افغانستان کے مسلمان, انڈیا اور پاکستان کے مسلمان,
بڑا دل زخمی ہے، ہماری عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، ہماری عورتیں بیوہ ہیں، ہمارے مرد جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں، غائب ہیں، ہماری جوانیاں چھن رہی ہیں، ہماری معصوم چھوٹی چھوٹی بچیاں درندوں کے ہاتھوں میں ہیں، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، تو ہمارے گناہوں کی سزا ان مسلمانوں کو نہ دینا۔ مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہو گیا کہ آج پانی بھی جو ہے وہ اتنا سستا نہیں ہے، مہنگا ہے، مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، تیرے قرآنی آیات جو ہے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اتنے مسلمان کہ اتنی تعداد میں پتھر جمع ہوتے تو پہاڑ بن جاتا، آنسو جمع ہوتے، پانی کے قطرے جمع ہوتے تو سمندر بن جاتا، تنکے جمع ہوتے تو گھونسلے اور گھر اور جنگل اور شہر آباد ہو جاتے، اور اتنی تعداد میں مسلمان اور کوئی کہیں آواز نہیں، کہیں نام نہیں، کوئی محمود غزنوی، کوئی ٹیپو سلطان، کوئی ابوبکر صدیق، کوئی عمر فاروق۔ اے اللہ، تجھے وہ پتہ ہے نا، تجھے تو پتہ ہے نا کہ ہم نے اپنے بچوں کے نام یعقوب رکھے ہیں، ابراہیم رکھے ہیں، محمد رکھے ہیں، اپنے بچوں کے نام موسیٰ اور عیسیٰ رکھے ہیں، اپنے بچوں کے نام احمد رکھا، معاذ رکھا، کبھی معاذ بن جبل کو یاد کیا، کبھی سعد بن معاذ کو یاد کیا، کبھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا، اپنی بیٹیوں کے نام خدیجہ رکھ دیے، اپنی بیٹیوں کے نام ام سلیم رکھ دیے، فاطمہ رکھ دیا، حفصہ رکھ دیا۔ اے اللہ، تجھے پتہ ہے کہ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، یہ ہمارے پیار کے انداز ہیں، لیکن بہت کمزور ہیں، بہت جلدی بہک جاتے ہیں، بہت جلدی شیطان کی چالوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ نام تو رکھ دیے ہیں، کردار تو دے دے، نیلی چھت والے تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو ہمارے بچوں کو متقیوں کا امام بنا دے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے بچوں کو متقیوں کا امام بنا دے، تو مجھے اور میرے شوہر کو، ہم سب کے شوہروں کو اور ہم کو، ہم ساری کو، ہم سب کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنا دے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے بچوں کو نماز سکھا دی، لیکن نمازی تو آپ بنا سکتے ہیں۔ اے دلوں کو پھیرنے والے یا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا علی طاعتک علی عبادتک، تو ہمارے دل، ہمارے بچوں کے دل اپنی عبادت کی طرف پھیر دے۔ اے ہمارے رب، ہم ہر رشتے سے پیار کرتے ہیں، مجھے بھابھی بھی بہت اچھی لگتی ہیں، مجھے ساس بھی بہت اچھی لگتی ہیں، مجھے بہن اچھی لگتی ہیں تو نند بھی بہت اچھی لگتی ہیں، اپنوں کو تحفے دیے تو سسرال میں بھی تحفے دیے الحمدللہ۔ اے میرے رب، اپنے رشتوں کو چاہا تو شوہر کی طرف سے جو رشتے تھے ان کو بھی خوب عشق کیا۔ اے رب، تو گواہ رہنا، تو ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں، تو ہماری چھوٹی چھوٹی یہ کوششیں قبول کر لے، اور اگر دلوں میں کہیں کینہ کدورت ہے، اگر سسرالی رشتوں میں کوئی کمی بھی ہے، اگر ہمارے معاملات میں تھوڑی خرابی بھی ہے، اگر ہم میں سے کچھ بہنیں اپنے رشتے داروں سے روٹھی ہوئی ہیں، وہ سگی بہن سے یا سگے بھائی سے، یا پھر یہ کہ اپنی درانی جٹھانی یا نند سے یا ساس سے یا سسر سے یا دیور یا جیٹھ سے، اے دلوں کو نرم کرنے والے، تو ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہم دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے بنا دے، ہمیں درگزر کرنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں کو نرم کر دے، یا منور القلوب، اے دلوں کو منور کرنے والے، تو ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کر دے۔ اے ہمارے رب، پتہ نہیں زندگی کے کتنے سانس اور کتنے سال اور کتنا تھوڑے سے لمحات باقی ہیں، پتہ نہیں زندگی کہاں کن چیزوں میں گزر گئی، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ گناہوں کی گٹھڑیاں ہیں، کمر دھوری ہو رہی ہے، اور نیکیاں جو ہیں وہ نظر نہیں آتی۔ تو اے ہمارے رب، کوئی ایسی نیکی، کوئی ایسی عبادت، کوئی ایک ایسی مسکراہٹ، کوئی ایک ایسا ایک گلاس پانی کا جو کسی کے گلاس میں ڈالا تھا، کوئی ایک ڈالر جو کسی غریب مسکین کے، یتیم کے ہاتھ میں رکھا تھا، کوئی ایک نیکی ایسی، اے ہمارے رب، کوئی ایک نیکی ایسی جو تجھے راضی کر دے۔ तू चाहे तो ला इला इला जो मुंह से कहने वाला है तू उसको जन्नत दे दे, उसका नेकियों का तराजू भारी कर दे, तू हमारी छोटी छोटी नेकियों को कबूल कर ले, तू हमें उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल कर ले जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद दे दे, हम सबको इकट्ठा कर दे, हमारे दिलों को जोड़ दे, हमें कुरान के करीब कर दे, हमें अपना बना ले, अपना पसंदीदा बंदा बना ले, अलखियार में शामिल कर ले। ऐ हमारे रब, जितनी माएं बहनें बेटियां हैं और जो इस वक्त ऑनलाइन सुन रही हैं और जो आइंदा सुनेंगी बहनें और भाई, तमाम मुस्लिम मुस्लिमात मोमिन मोमिनात सबकी बख्शिश कर दे, सबकी नेक जायज़ ख्वाहिशात को कबूल कर ले, सबकी मुश्किलात को दूर कर दे। ऐ हमारे रब, हमारे बच्चों को अपना बना ले, हमारे बच्चों को हमारी आंखों के आंसू नहीं हमारी आंखों की ठंडक बना दे। माएं रो रही हैं, परेशान हैं कि बच्चे ड्रग्स में हैं, माएं रो रही हैं कि बच्चे गलत सोहबत में हैं, परेशान हैं वालदैन कि माँ आई मेरे पास रो रही थी कि बेटी ने पुलिस कॉल कर दी है, माँ रो रही थी कि बेटी ने पुलिस कॉल कर दी है, माँ आई और कह रही थी कि बगैर किसी रिश्ते के बेटा किसी के साथ रह रहा है, कि बाप रो रहा है कि बच्चे जो है वो हाथों से निकल निकल जाते हैं। ए इब्राहिम को हदायत देने वाले, तू हमारे बच्चे को इब्राहिम बना दे, हमारे बच्चों को इब्राहिम बना दे, हमारे बच्चों को नमाजी बना दे। ए हमारे रब, हमें अच्छा किरदार दे दे, किरदार की सच्चाई दे दे, कहने वाला नहीं, सिर्फ कहने वाला नहीं अमल करने वाला बना दे। ऐ हमारे रब, जो बे औलाद है उनको औलाद की नेमत से नवाज, जो बेटे चाहते हैं उनको बेटे दे दे, जो बेटियों के तलबगार हैं उनको बेटियां अता कर, और बेटियां और बेटे ये जो हमारे हाथों में पेपर हैं इनको बहुत खूबसूरत हल करने वाला बना। ऐ हमारे रब, हाईएस्ट मार्क्स लेकर जन्नत के आला तरीन दर्जे में जाना चाहते हैं, दुनिया में आला ब्रांड, आला फोन, आला घर, आला गाड़ी, हर चीज अच्छी लगती है, तो ऐ मेरे रब जन्नत में बेहतरीन दर्जा जन्नतुल फिरदौस चाहिए। और हमारे बच्चों को नेक और लायक कर दे, जिस भी मैदान में जिस भी शोबे में जाएं, जो इम्तहान दे रहे हैं, जो किसी जगह अप्लाई कर रहे हैं उनको वहां पे कामयाब कर दे, हमारे बच्चों के अच्छे रिश्ते कर दे, जो नेक और मुत्तकी लोग हैं खुद ब खुद हमारे कदमों के रुख उनकी तरफ कर दे और वो खुद ब खुद हमारे सामने ले आ। हम किसी की बेटी किसी के बेटे के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, वो तेरे बनाए हुए हैं, वो तेरी मखलूक है, डर लगता है, तू हमें हमारे लिए सूरत सीरत अच्छा इखलाक हमारे सामने कर ले। जो शादियां हो रही हैं इनको कामयाब कर दे, मियां बीवी में मोहब्बतें दे दे, सबर और शुक्र करने वाला बना दे, हम सब की नेक और जायज़ ख्वाहिशों को कबूल कर ले, बीमारों को शिफा अता कर दे, हाजियों के हज कबूल कर ले, जो हज और उमरे पे जाने की ख्वाहिश करते हैं ऐ हमारे रब उनके लिए ये मराहिल आसान कर दे, घरों में बूढ़े वालदैन हैं सास ससुर हैं उनकी खिदमत करके जन्नत कमाने वाला बना, जिनके हमारे वालदैन की जिंदगी के दिन आसान कर दे, उनको किसी का मोहताज ना कर। ऐ हमारे रब फरिश्तों के जरिए उनकी मदद कर, हमें मरते वक्त कलमा नसीब करना, नामाए माल दाएं हाथ में देना, और ये घर जिसमें तेरा जिक्र किया गया कुरान पढ़ा गया, ये बहनें जो यहाँ पे आई हैं जिन्होंने दरियां बिछाई हैं जिन्होंने खाने पकाए हैं जिन्होंने दावत दी है जिन्होंने कॉले की हैं जिन्होंने राइडें दी हैं जिन्होंने एक दूसरे तक बात आगे पहुंचाई, ये सबकी नेकी कबूल कर ले, इनको इन सबकी ये नेकी को बहता हुआ नेकी का समंदर बना दे, जो मांगा वो भी दे दे, जो ना मांग सके और हमारे हक में बेहतर है वो भी दे दे, और दारुल ईमान को अपनी जनाब से बेहतरीन जगह दे दे जिसे हम जो है वो तेरे दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर सकें, जिसे हम जो है जिसमें तेरा नाम बुलंद कर सकें, और हमें एक अच्छा किरदार दे बहसियत एक मुसलमान के बहसियत एक शहरी होने के अच्छा किरदार अदा करने वाला बना। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नाका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नाका अंतस समीउल अलीम, और जो भी बीमार हैं उनको सेहत कामल अता कर। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन आमीन सुम्मा आमीन।